ओम अज्ञानतिमिरन्धस्यज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुःवन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्तराधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों को हम कृष्ण रसायनम के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के अंतिम अध्याय जो है 19वां, जिसमें 40 श्लोक हैं, महत्वपूर्ण अध्याय है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। आप में से अनेक भक्त लोग पिछले पूर्व सत्रों में आए हैं, फिर भी एक दो विषय इधर शुरुआत के 5 मिनट में बताएंगे जो अभी तक हमने किया है। आगे हम उसके बाद सत्र को आगे करेंगे। तो पूर्व अध्याय में 18वां अध्याय में हमने परीक्षित महाराज को श्रृंगी ने कैसे श्राप दिया उसके बारे में चर्चा की थी। समीक ऋषि और परीक्षित महाराज, उन दोनों के बीच में क्या हुआ और श्रृंगी और उनके मित्रों के समक्ष उन्होंने जो श्राप दिया, उसके बाद श्रृंगी आकर मिलते हैं अपने पिता श्री समीक ऋषि से, जोर से फुट फुट कर रो पड़ता है श्रृंगी। वो छोटा लड़का है, अपक्व है, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे पिताजी को किसी ने निंदा किया है तो मुझे बदला लेना चाहिए। इस तरह बदले लेने के मूड में उन्होंने परीक्षित को ऐसे एक श्राप दे दिया था। तो उसके बाद जब अपने पिताश्री के पास आकर बोला कि ऐसा मैंने एक श्राप दिया है परीक्षित को, उसको सुनकर उनके पिताजी समीक ऋषि बहुत दुखित हुए। उन्होंने बच्चे को डांटा, अरे मूर्ख बालक, तुमने क्या कर दिया? सारे दुनिया के राजा परीक्षित महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और सब ऋषि मुनि उनको बहुत पसंद करते हैं, सदा वो कृष्ण के दासानुदास बनकर उन्होंने राज्य को चलाया है और पांडवों के वंशज हैं, साथ साथ भगवान खुद साक्षात उनकी सुरक्षा उनको प्रदान किया है उनके जन्म के समय जब अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र को चलाया था उत्तरा के गर्भ में, हा? तब भगवान ने खुद परीक्षित को बचाया, इसलिए परीक्षित का एक नाम पड़ा विष्णुराट। इस तरह परीक्षित की गुणगान किया उन्होंने और बोला कि ऐसे एक महान पुरुष, एक महान राजा, भगवान के शुद्ध भक्त, इनको तुम भूल से एक श्राप दे दिया तुमने, ये बहुत बड़ा अफसोस की बात है। तो अपने बेटे को डांटा उन्होंने। तो इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, तो हमने ये विषय भी पढ़ा पिछले अध्याय में कि देखिए परीक्षित जैसे शुद्ध भक्त कभी भी अपने जीवन में गलत नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? वो चार जो त्रुटियां हैं बद्ध जीवों में उनसे वो ऊपर है। देखिए हम लोग, हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, साथ साथ हम गलतियां करते हैं, गलती को छुपाने के लिए धोखा भी देते हैं दूसरों को, इस तरह विविध त्रुटियां हैं हमारे जीवन में, हमारे इस बद्ध अवस्था में। लेकिन परीक्षित शुद्ध भक्त था, वो इन अवगुणों से ऊपर उठ गया था। वो ऐसा बताया गया कि एक बार परीक्षित अपने प्रजा की स्थिति को समझने के लिए जब भ्रमण किया उनके राज्य में, तब अनेक अनेक लोग आकर उनको प्रशंसा करते हैं, बहुत परीक्षित को भी बोलते हैं कि भगवान ने तुमको बचाया था तुम्हारे माँ के गर्भ में है। और कुछ लोग उनके पूर्वज जो हैं, जैसे पांडव, युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन, भीम इत्यादि, इनकी बहुत गुणगान किया। तो लोगों ने बोला उनको, देखो भगवान श्री कृष्ण एक दास बनकर तुम्हारे दादाजियों की सेवा किया है। भगवान जब पांडवों के महल में जाते थे, महीनों महीने कभी ठहरते थे उनके साथ, बहुत वो प्रेम करते थे पांडवों को, साथ साथ पांडवों के शांति दूत बने दुर्योधन के पास जाते समय, साथ साथ भगवान ने उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक वीरासना बनकर उनकी उनको सुरक्षा प्रदान किया। विविध कठिन जटिल परिस्थितियों में भी भगवान पांडवों को बचाया, एक विष से भीम को बचाया, अग्नि से पंच पांडवों को और कुंती माता को बचाया, द्रौपदी को बचाया, कुंती माता और पंच पांडवों को बचाया आग से। इस तरह वो विविध उदाहरण देकर लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। तो पांडवों की स्मरण किया उसने, जब उन्होंने सुना कि भगवान मेरे दादाजी अर्जुन के सारथी बने, तो परीक्षित के रोम कड़े हो गए, पुलकांगित हो गए, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगा। इस तरह परीक्षित साधारण पुरुष नहीं है, वो शुद्ध भक्त है। भगवान के नाम और उनकी लीला को सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बहता है, रोम कड़े होते हैं। ऐसे एक शुद्ध पुरुष जिनका चित्त संपूर्ण निर्मल हो चुका है, वो कैसे किसी एक दूसरे जीव से, और वो भी खास एक ऋषि मुनि से, एक समीक ऋषि के गर्दन पर एक मृत सर्प को डाल सकता है? कैसे कर सकता है? वो असंभव है। लेकिन ये भगवान कृष्ण की इच्छा थी, इसके बारे में मैं पिछले सत्र के अंत में बोला मैंने कि भगवान कृष्ण की योजना क्या था। अभी कलयुग का जमाना चालू हो गया, लेकिन कलिराज को एंट्री नहीं मिल रहा है, तो कली देख रहा है कि परीक्षित का शासन इतना पक्का है, ऐसा शासन कर रहा है कि कहीं भी कोई मांस नहीं खाते, कोई जुआ नहीं खेलते, कोई अवैध पुरुष स्त्री संग नहीं करते, कोई नशा नहीं लेते। इस तरह से चार अधर्म के खंभ जो होते हैं, द्यूतंपानम स्त्रिया सोना यत्रा अधर्मश चतुर्विधः। ये परीक्षित के राज्य में कहीं भी मिलते नहीं थे ये चार चीज। इसके कारण कुछ नहीं कर पाया कलिराज। उस समय कलिराज ने सोचा कि मुझे एंट्री कैसे मिलेगा, अंदर में कैसे प्रवेश करूंगा लोगों के जीवन में। अभी कलि को बढ़ाना मेरा कार्य है, मैंने मुझे भेजा गया हूं, मैं आया हूं इधर, लेकिन कलि का प्रगति नहीं हो रहा है। कलि बंधा गया, परीक्षित के राज्य के बाहर रहना पड़ा उसको। तो भगवान ने देखा कि कलि का जमाना चालू हो गया, कलि को अभी अभी प्रभाव करने की जरूरत है। क्योंकि कलियुग के जीव जो होते हैं वो लोग जब कलि के प्रभाव में आएंगे, विविध तरह की यातना को सामना करेंगे, तभी कि उसमें से कुछ पुण्यात्मा जीव भगवान और भगवान के भक्तों की ओर दौड़ेंगे, तभी तो आश्रय लेकर भगवत धाम लौटने की संभावना है। इसलिए और बाकी जो जीव कलिराज के विविध गंदे आदतों को पकड़कर मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रुता है, ऐसे भागवत में बताया गया है, तो मंद बुद्धि वाले इस कलयुग में भटकते रहेंगे और अंत में कल्कि आकर उनको खत्म कर देंगे। उसके बाद सत्ययुग का जमाना चालू होगा। तो भगवान ने सोचा कि कलि को भी छोड़ा जाए उसके काम करने के लिए, वो एक बात था। दूसरी बात था, भगवान ने सोचा कि परीक्षित का शासन अच्छा हुआ, अभी परीक्षित को वापस लौटाना चाहता हूँ अपने धाम, मेरे धाम में ले लो। भगवान ने सोचा अभी तक उसने अच्छे अच्छे कार्यकलाप कर दी, अभी आगे हमें देखना चाहिए। तो भगवान ने सोचा कि परीक्षित को ले लो। तीसरी बात है कि भगवान ने सोचा कि परीक्षित इतना मेरा शुद्ध भक्त है, उसको मैं ऐसे ही एक परिस्थिति में डालूंगा जिसमें उसके हृदय पिघल जाएगा और वो मेरे संबंध में अच्छे अच्छे प्रश्न पूछेगा वो, और खास करके सुखदेव गोस्वामी से। तो उनके पूछताछ दोनों के बीच में जो होता है, जिज्ञासा होता है परीक्षित की, उससे सारे जीवराशियों को लाभ प्राप्त होगा। इस तरह मैं भागवत को छोड़कर जाना चाहता हूं, भगवान ने सोचा इसे, क्योंकि भागवत रोशनी लाएगा कलयुग में। जब मेरे अनुपस्थिति में अंधकार छा जाएगा, उस अंधकार में भागवत रोशनी लाएगा। जैसे इधर सब लाइट लगाया गया है इधर हाल में, अगर सब लाइट बंद किया जाए तो इधर एकदम काला काला दिखेगा, है ना, अंधकार हो जाएगा, लेकिन लाइट जलाने के बाद रोशनी के बाद हम एक दूसरे को देख पाते हैं। इस तरह भगवान की योजना थी कि मैं अपने धाम लौटने वाला हूँ, कलयुग का जमाना चालू हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, और उस समय जो मैं मुझे प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भागवत छोड़कर जाऊंगा, और जो मुझे प्राप्त नहीं करना चाहते हैं वो कलिराज के पीछे दौड़े, और परीक्षित को भी हमें वापस लौटाना है उनके धाम में, और लौटने के पहले एक अच्छा कार्य करके उनको लौटाएंगे। क्या है वो, उनको ही एक निमित्त बना दूंगा। निमित्त बनाकर सुखदेव गोस्वामी जो सबसे श्रेष्ठ उच्च कोटि के शुद्ध भक्त हैं, तो व्यास के पुत्र हैं, उनके द्वारा कथा बोला जाए और परीक्षित सुनेगा, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछेगा। क्योंकि परीक्षित इतना पहुंचा हुआ शुद्ध भक्त था कि उस सभा में अनेक लोग बैठे थे, ज्ञानी लोग थे, योगी लोग थे, कर्मी लोग थे, अभिविध तरह के लोग थे उधर। सबकी मनोस्थिति जानकर परीक्षित प्रश्न पूछता था। उनको मालूम था कि उदाहरण के लिए जब रास नृत्य की बात आया, तब परीक्षित ने देखा कि कुछ कुछ ऋषि मुनि अपने भ्रुकुटी को ऐसे कर रहे थे, क्या चल रहा है, अरे भगवान ने कुछ लड़कियों के साथ नाचा क्या। उसको सुनकर तुरंत परीक्षित ने प्रश्न पूछा, कृष्णम विदुखो परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमः तासाम गुण धियाम कतम। ये गोसाई जी बताइए, ये गोपियां कृष्ण के साथ जो नाच रही थी रास नृत्य में, ये क्या हुआ, तीन गुणों से गुणातीत थी, नहीं तो ये गुण के अंदर होती तो ये तो अपने कृष्ण को अपने एकांता नहीं तो प्रेमिका के रूप में देखकर नाचती होती है। तो इस तरह कृष्ण क्यों नाचते हैं, इस तरह दूसरे गोपियों से लड़कियों से इस तरह उन्होंने पूछा। तब सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, हे राजन, तुमको ये सब जवाब पहले से मालूम है, फिर भी तुम पूछ रहे हो, मैं बताऊंगा तुमको। वो अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं, बाकी जो ज्ञानी योगी वगैरह लोग बैठे हैं उनकी उनकी लाभ के लिए पूछ रहे हैं वो। तो जवाब देते हैं, अरे कृष्ण सात उम्र में गोवर्धन पर्वत को धारण करके गोवर्धन धारी बने, और 8 उम्र में वो नाच रहे थे गोपियों के साथ। 8 उम्र में एक बच्चे के अंदर एक विकार कुछ नहीं आता है। और साथ साथ वो उन्होंने बोला कि कृष्णा जो नाच रहे थे जैसे अपने ही अंशों के साथ वो नाच रहे हैं। साथ साथ देवी बोले कि गोपियां के रिश्तेदार सब देख रहे थे कि गोपियां घर में ही लेटी थी, उनका शरीर लेटा था, लेकिन उनकी आत्मा बाहर निकलकर आत्मा के साथ भगवान कृष्ण नाच रहे थे। ऐसे विविध चीजें बताते हैं, वो 7-8 चीज बताते हैं, मैं 2-3 बोला आपको अभी। लेकिन ये सब बात सुनकर सब बाकी लोगों को भी अच्छा लगा, समझ में आ गया उनको कि सर परीक्षित को भगवान ने एक निमित्त बनाया कि इस दुनिया के सब लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए परीक्षित जैसे महान भक्त श्रोतागण बनना चाहिए और सुखदेव गोस्वामी जी वक्ता बनेंगे, इस तरह भगवान की योजना थी। और कैसे किया जाए ये सब चीजों को एक साथ करने के लिए भगवान ने परीक्षित के मति के अंदर प्रवेश करके उनको अंदर से एक मार्गदर्शन दिया कि तुम जंगल में जाओ, तुमको पसीना छूटेगा जंगल में इधर उधर शिकार करते हुए, जब प्यास लगेगा तुमको, भूख लगेगा, तब तुम एक समीक ऋषि के कुटिया के पास चले जाओगे, उधर जाने के बाद तुमको बहुत प्यास लगेगा, पानी नहीं मिलेगा तुमको, तब क्या करना चाहिए परीक्षित, तुमको एक मृत सर्प रहेगा उसको उठाकर समीक ऋषि के गर्दन में डाल देने का। इस तरह भगवान ने प्रेरणा दिया उनको। तो परीक्षित तो ऐसे जैसे आप लोग जानते हो जो एक खिलौना होता है उसको चाबी देने से टिंग 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 करता है, देखा आपने, हाथ पैर हिलाता है, देखा आपने, ऐसे भगवान के भक्त भी कठपुतली हैं भगवान के हाथ में ना? दीन बंधु दीनानाथ मेरे डोरी तेरे हाथ, ऐसे गीत है। तो भक्त लोग भगवान को दीन बंधु के रूप में मानते हैं और अपने डोरी, जीवन की डोरी भगवान को सौंपा देते हैं। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की वो घोड़ों की लगाम को भगवान को दे दिया ना, भगवान को बोला कि आप चलाइए हमारे रथ को और आप मार्गदर्शन दीजिए हमको ना? इस तरह अपने जीवन को सौंपा देते हैं भक्त लोग भगवान के पास और भगवान की इच्छा अनुसार नाचते हैं भक्त लोग। जो भक्त भगवान की इच्छा अनुसार नाचता है वो ही बाद में भगवान को नचा सकता है ना? ऐसा होता है, यशोदा मैया बांध रही है कृष्ण को, कृष्ण भी बांधे जा रहे हैं क्योंकि यशोदा कृष्ण की इच्छा अनुसार पहले नाच रही थी, इसके लिए वो उनको बांध पाई यशोदा। इस तरह परीक्षित भी ऐसे ही एक उच्च कोटि का भक्त था, भगवान की इच्छा अनुसार भगवान ने बोला तुम एक मृत सर्प को उठाकर उनके गर्दन में डालो, उन्होंने डाल दिया ऐसे। और प्रभुपाद जी इस बात को निरूपण करने के लिए पूर्व अध्याय में अनेक विषय बोला प्रभुपाद जी ने, शुद्ध भक्तों को इस तरह की भूख प्यास होते समय उनको क्रोध नहीं होता और इस तरह उनके इंद्रिय में तृष्णा नहीं होता। और साथ में बोलते हैं कि शुद्ध भक्त तो सब जीवों के साथ, प्राणियों के साथ मैत्री जोड़ते हैं, किसी के साथ दुश्मनी नहीं, उनका नाम ही अजात शत्रु पड़ता है। ऐसे शुद्ध भक्त खास करके ब्राह्मण ऋषि मुनि उनके विरुद्ध कुछ काम कभी नहीं करेंगे। इसलिए अगर परिचित किया है तो भगवान की इच्छा है, ये तो समझ आते हैं प्रभुपाद जी ऐसे। तो वो अध्याय हमने पढ़ा, अभी आगे हम 19वां अध्याय लास्ट अध्याय आज पढ़ेंगे हम। इस अध्याय का शीर्षक है सुखदेव गोस्वामी की प्रवेश। फिर भी इसके साथ साथ इस अध्याय में 3 विषय के बारे में चर्चा हो रहा है। इस अध्याय में 1-7 श्लोक उधर परीक्षित की अनुताप नहीं तो पश्चाताप उसके बारे में हम पढ़ेंगे 7 श्लोकों में। तो ये पश्चाताप इतनी महत्वपूर्ण बात है कि मैंने आज के प्रवचन का शीर्षक वो ही दे दिया। क्या दिया था मैंने शीर्षक, अगर किसी को श्राप मिला तो उसको सकारात्मक कैसे बनाए, है ना, वही दिया गया है। तो उस शीर्षक का मतलब क्या है, परीक्षित को श्राप मिला था श्रृंगी से, है ना, श्रृंगी से उसको श्राप मिला था। तो श्राप क्या था, 7 दिन में तक्षक नाम का एक सर्प परीक्षित को डसेगा और वो अपने प्राण को त्याग देंगे 7 दिन में, 7 दिन के बाद। देखिए हम लोगों को मालूम नहीं मृत्यु कब आने वाला है अपने जीवन में, लेकिन परीक्षित को मालूम था 7 दिन में होने वाला है। तो परीक्षित बहुत चिंतित हो गया, उसने सोचा कि 7 दिन में अगर मेरा मृत्यु होने वाला तो मुझे क्या करना चाहिए, इस 7 दिन को कैसे अच्छी तरीके से सदुपयोग कर सकता हूं। मरने के लिए डर नहीं था उनको, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को शरीर छोड़ना ही पड़ता है एक न एक दिन। लेकिन उनको प्रश्न उठा उनके मन में कि क्या करना चाहिए जो करने से मेरा जीवन मंगलमय होगा, यशस्वी होगा, तो इससे मुझे भी लाभ, सबके लिए लाभ होगा। तो वो उनको मालूम नहीं था, उसके बारे में पूछताछ करने की इच्छा थी। तो इसलिए पहले 7 श्लोकों में परीक्षित ने कैसे पश्चाताप की उसके बारे में चर्चा करेंगे, और आगे 8वां से लेकर 24वां श्लोक तक कैसे परीक्षित ऋषि मुनियों के साथ पेश आए उसके बारे में वर्णन है, बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है वो भी। और 25वां श्लोक से लेकर 40वां लास्ट तक परीक्षित की कृतज्ञता और वो सुखदेव गोस्वामी के साथ जिज्ञासा करता है उनके पास, उसके बारे में वर्णन है। तो पहले हम 7 श्लोकों को पढ़कर हम पश्चाताप के बारे में कुछ समझेंगे। सुतवाच महीपतिस्त्वत तत्कर्म गर्ह्यम् विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतम् निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि। देखिये सुत गोस्वामी बता रहे हैं शौनकादि ऋषियों को, वो राजा परीक्षित जब वो घर वापस लौट आ रहा था तभी उसके मन ही मन विचिंतयन क्या सोचा उसने, आत्मकृतम सुदुर्मनाहा। वो सुदुर्मनाहा मतलब है डिप्रेशन, डिप्रेशन बोलते हैं ना, जैसे हतोत्साहित हो गया वो घर लौट आते समय, महल लौट आते समय। क्यों सुदुर्मनाहा, विचिंतयन आत्मकृतम बताया गया, मेरे हाथ से कुछ गलती हो गया ऐसे उसने सोचा। अहो मया नीचम अनार्यवत कृतम, मैं नीच हूं, पतित हूं, मैं एक अनार्य, अनार्यवत का मतलब है जो वैदिक संस्कृति को अपने जीवन में अपनाने वालों को आर्य बोलते हैं, और जो लोग वैदिक संस्कृति को अपनाते नहीं अपने जीवन में, भगवान के अनुयायी नहीं है, उनको अनार्य बोलते हैं। मैं अनार्य नास्तिक जैसे कुछ गलत कर्म कर बैठा, मैं ऐसे अपने अपने आप को कोस रहा है। निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी, वो जो ब्राह्मण बैठा था समीक ऋषि, वो ध्यान में लगाया था अपने आप को, शायद हो सकता है कि वो असली रूप में ध्यान में था। मैंने सोचा कि मुझे पानी नहीं दे रहा है, मेरे ऊपर मेहमान आया हूं, मैं सारी दुनिया का राजा हूं, हमें इस तरह तिरस्कृत कर दिया हमको, इस तरह सोचकर मैंने एक मृत सर्प को डाला उनके ऊपर। ऐसे एक तेजस्वी, एक महान ऋषि जो बड़े ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर मैंने ऐसे अपराध कर दिया, इस तरह सोच सोच कर उसके मन में एक तरह का अनुताप हो गया उसको। देखिए पश्चात ताप बोलते हैं, पश्चात का मतलब है ये कर्म करने के बाद आने वाला, ताप का मतलब है गरम गरम अश्रु निकलना आंखों से। देखिए अगर कोई कुछ गलत काम किया हो उसके बाद पश्चाताप करता हो, हाय हाय इस तरह का गलत काम हो गया है, मुझे नहीं करना था, मैं क्यों किया, तो अपने उसको शर्म आता है उसके बारे में सोचकर। सर्वप्रथम तो उसको मानना चाहिए कि मेरा ये मेरा गलती है, हुआ है। इस दुनिया में जब दो लोगों के बीच में कुछ होता है उस समय एक व्यक्ति दूसरे को हिंसा करता है कुछ, लेकिन बाद में दोनों मानते नहीं है, बोलते हैं कि उसका गलती है, उसका गलती है ना। आप लोगों ने देखा होगा सड़क में एक कार ऐसे आता है, एक कार ऐसे आता है, टुकरा जाता है, दोनों उतर जाते हैं, चिल्लाते हैं एक के ऊपर, पता नहीं किसका गलती है, तो ट्रैफिक पुलिस में आकर देखता है कि किसने किसको टोका। लेकिन दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को उंगली दिखाते हैं, तू 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 तुमने क्या बोलते हैं, ऐसे मानते नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज ने अपने गलती को मान लिया, हालांकि क्या उनका गलती था, क्या वो भगवान से प्रेरित होकर किया उन्होंने, फिर भी जिम्मेदारी लिया अपने ऊपर। ऐसा नहीं बोला कि ए दुनिया के लोग थोड़ा समझ लो कि भगवान का मैं शुद्ध भक्त हूं, मेरा नाम है विष्णुराट, भगवान ने हमको बोल दिया करो करके हमने कर दिया बस, ऐसे बोला क्या उन्होंने, भगवान को खींचा नहीं उन्होंने, वो अपने ही गलती माना, हमारे हाथ से गलती हो गया ऐसे। तो ये सर्वप्रथम मानना। दूसरा चीज है शर्म आना, उनको शर्म आया, अनाद्यवत कृतम, मैं एक अनारी के बराबर मैंने काम किया है, इस तरह। और तीसरा है किसी भी दंड के लिए तैयार हो जाना। अगर कुछ दंड हो, कुछ कुछ लोग अपने गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ऐसे कंप्यूटर को उठाया, धड़ाल करके नीचे डाल दिया, कंप्यूटर का स्क्रीन टूट गया। अभी कंप्यूटर का ऑन करो, ऑन नहीं होता है, बोलता सारी प्रभु जी, बोलता बस सारी से हो गया, हो जाएगा काम। उसको क्या बोलना चाहिए, प्रभु जी स्क्रीन टूट गया, तो आप थोड़ा ये मैकेनिक जो है उससे पूछिए, कंप्यूटर मैकेनिक से पूछिए कि इसका दाम कितना होगा, अगर उसका 10,000 हो मैं भर दूंगा आपको। इस तरह दंड को चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए, समझना आपने। ऐसे नहीं कि सारी बोलकर निकल गया, वो जल्दी निकल गया, नहीं तो पैसा मांगेगा करके डरे उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इससे पहले मैंने बोला अपने गलती को मान लेना, दूसरा है शर्म आना, और तीसरा है दंड को अपनाने के लिए तैयार हो जाना, और चौथा है एक दृढ़ता के साथ एक निर्णय लेना कि आगे जाकर मैं गलती कभी नहीं करूंगा, इस तरह। वो चौथा है, ये चार चीज है पश्चाताप में। टू एक्सेप्ट अवर फॉल्ट, टू फील शेमफुल, एंड टू बी विलिंग टू एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट दैट इज ड्यू फॉर अस, एंड फाइनली द फोर्थ वन इज बी डिटरमाइंड नॉट टू कमिट द सेम मिस्टेक अगेन। चार चीज है परीक्षित ने चारों किया, आप पढ़ेंगे आप देखेंगे इस तरह है। तात्पर्य पढ़िए।
तात्पर्य, शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है, और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, और भगवत कृपा से ऐसे अनिच्छित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं।
इस तरह प्रभुपाद जी पश्चाताप के बारे में अच्छी चीज बताते हैं उधर। भक्त को जानबूझकर कुछ गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अनजाने से कुछ मिस्टेक हो जाते हैं। कभी कोई भक्त पैसा लेकर जाता है, कुछ क्रेडिट कर लाने के लिए पैसा खो बैठता है, किसी ने पिक पॉकेट कर दिया अनजाने से। एक बार अगर पिक पॉकेट हो गया तो एक भक्त था, वो कभी कभी किताबों को लेकर इधर से शिवाजीनगर जाता था किताब वितरण के लिए, उधर 2-3 किताब वितरण करके वापस ऑटो में आता था। तो जाने के लिए 200, आने के लिए 200, और 2 किताब वितरण किया, उसका प्रॉफिट 4 रुपया। और कभी कभी साथ साथ किताबों को खो बैठता था इधर उधर, किसी को देता था पैसा लेने के लिए भूल जाता था, और जो कलेक्शन किया पैसा वो भी इधर उधर घुमा देता था। बाद में हमने बोला तुम उसको किताब देने के लिए मत जाओ, इधर सिर्फ ये भगवान के बर्तन सफाई करो, बस ऐसे बोल दिया उसको। कुछ कुछ लोग गलती करते हैं, लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराना नहीं चाहिए ना? वो बताते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, और जानबूझकर भी गलती करना नहीं चाहिए भी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी अकस्मात अचानक कुछ भक्त से गलती होता है, उसको भगवान माफ करते हैं अगर भक्त पश्चाताप करता है तो, ऐसे बताते हैं। दूसरा श्लोक, ध्रुवम ततो मे कृत देव हेलनात् दुरत्ययम् व्यसनम् नाति दीर्घात् तदस्तु कामम् ह्यगनिष्कृताय मे यथा न कुर्याम् पुनरेव मद्धा। अनुवाद पढ़िए।
भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूं कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा।
देखिए इधर बता रहा है कि ध्रुवम का मतलब जरूर हा? बता रहा है कि कृतदेव हेलनाथ, मैंने भगवान को भगवान के ऊपर अपराध किया है, देव हेलनाथ, इसके कारण वो बोल रहा है कि भगवान के आदेशों को उल्लंघन किया है, क्योंकि भगवान ब्राह्मण और गायों को बहुत पसंद करते हैं, मैं ऐसे कुछ गलत काम किया है जिससे भगवान मेरे से कुपित हो जाएंगे। हा? और दुरत्ययम व्यसनम न अति दीर्घात, न अति दीर्घात मतलब जल्दी ही जल्द मेरे ऊपर कुछ तो व्यसनम, कुछ बड़ा दंड मुझे आने वाला है, जरूर ऐसे बताता है, जरूर आएगा वो। तदस्तु कामम ये अनग ये अग निष्कृताय में, और बता रहा है कि मेरे पाप के लिए वो बोल रहा है कि मैं इस तरह का पाप वापस कभी मत करूं, किसी ऋषि मुनियों के अपमान कभी ना करूं, इस तरह प्रार्थना कर रहा है। देखिए हम लोग अपने जीवन में किसी को अपराध किया हो तुरंत जल्दी ही जल्द माफी मांग लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आप कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, इस तरह एक दूसरे के साथ बोलते समय वो थोड़ा दुखित हो जाते हैं, वो तुरंत हम उनको बोल सकते हैं कि प्रभु जी अगर हमारी बातचीत से अगर आपको थोड़ा बुरा लगा, अपराध ना हो जाए, आपको दुखित तो ना किया मैंने, अगर मैं कर दिया तो आप माफ कर दीजिए, इस तरह बोलकर हमें तुरंत उसको कैंसिल कर देना चाहिए। जैसे बड़ा बड़ा बर्तन में जब हम कुकिंग करते हैं किचन में, कुकिंग करके उसको पतीला को नीचे रखने के बाद तुरंत पानी डालकर आप उसको सफाई करेंगे तो निकल जाएगा वो, लेकिन कुछ समय के लिए उसको डालकर रखो धीरे धीरे पकड़ता है वो, बाद में छूटेगा नहीं आसानी से। इस तरह अपराध भी ऐसा ही है, पाप भी ऐसा है, अगर पाप किया तुरंत पश्चाताप नहीं किया तुरंत, तो धीरे धीरे वो पाप ऐसे पकड़ लेगा बाद में हम निकल नहीं पाएंगे उससे, इसलिए जितना जल्दी हो शुभ से शीघ्रम उसको निकल उसका पश्चाताप कर लेना चाहिए, ऐसे बताया गया है। तो इस दुनिया में देखा जाता है कि लोग जब कुछ अच्छा ही होता है तो लोग बोलते हैं हमने किया हमने किया, कुछ गलत ही हो गए तो लोग बोलेंगे उसने किया होगा इसने किया होगा। जैसे एक बार ऐसे ग्लास टूट गया नीचे, तो किसी ने पूछा अरे किसने तोड़ा, वो बोला कि उसने तोड़ा, वो बोल रहा नहीं नहीं प्रभु जी हमने तोड़ा नहीं, हमने ग्लास में पानी लेकर इनको दिया, इन्होंने उसको पकड़ा नहीं ठीक तरह से इसलिए वो नीचे गिर गया। तो वो भक्त ने इसको पूछा प्रभु जी आपने सही ढंग से पकड़ा नहीं, वो बोल रहा है कि उनको सही ढंग से देना था दिया नहीं उन्होंने इसलिए हमने सही ढंग से पकड़ा नहीं, अभी पता नहीं किसको दंड दिया जाए। हर इंसान इस दुनिया में क्या करता है, दोष दूसरों को देता है। अगर आप पूछो अच्छा ही कैसे हुआ, सब लोग भागते हुए आएंगे, इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है सक्सेस हैज मेनी फादर्स फेलियर इज ऑर्फन, उसका मतलब है अगर कुछ अच्छा ही हुआ तो उसके लिए अनेक पिताजी आ जाते हैं, हमने किया हमने किया हमने किया बोलेंगे, अगर कुछ गलत ही हुआ तो सब लोग बोलेंगे किसने किया सब पूछेंगे सबको, अरे तुमने किया क्या तुमने किया क्या सबको पूछेंगे, गलती करने वाला ही पूछेगा सबको किसने किया करके ऐसे। लेकिन देखिए इधर परीक्षित बोल सकता था कि देखो गलती हमारा नहीं था, हम सारे दुनिया के राजा हैं, हम उनके कुटिया में गए, हमको थोड़ा बहुत पानी देना चाहिए, बैठने के लिए स्थान देना चाहिए, ये भी नहीं कर सकता है, वो क्या डोंगीबाजी कर रहा है आंख बंद करके, क्या नाटक कर रहा है, क्या वो क्या ध्यान में लगा है क्या, उसको हमारे मेहमान को स्वागत करने की मन नहीं है इसलिए आंख बंद कर लिया उसने, इसलिए तो हमको डालना पड़ा मृत सर्प को, ऐसे बोल सकता था ना वो, लेकिन बोला नहीं उसने, अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया, बोला कि गलती हो गया हमारा तो उसके लिए दंड स्वीकारने के लिए तैयार था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त परजीवों को क्लेश कभी नहीं देते, अगर क्लेश हो जाता है तो बहुत दुखित हो जाते हैं खुद भी। जैसे आप देखेंगे गीता भगवान बोलने के पहले कुरुक्षेत्र युद्धभूमि में अर्जुन रो रहा था क्योंकि परजीवों को क्लेश नहीं देना चाहता था वो इसलिए, और युद्ध होने के बाद और एक व्यक्ति रोया कौन, युधिष्ठिर महाराज, उन्होंने बोला कि मैं राज्य सिंहासन में बैठकर शासन करने के लिए कितने कोटानुकोटि योद्धाओं को मारना पड़ा, मैं कितना बड़ा लोभी हूं राज्य लोभी हूं, इस तरह अपने आप को कोसा। तो भगवान ने बोला मेरे उपदेश के ऊपर तो अर्जुन ने सबको मारा है, आप क्यों चिंता कर रहे हो, गलती आपका नहीं है। वो बोले नहीं नहीं गलती मेरा ही है क्योंकि मैं राज्य लोभ है। तो उसके बाद वेद व्यास के पास लेके गए भगवान, उसके बाद विष्णु पितामह के पास लेके गए, उसके बाद उनको शांतावना मिला विष्णु पितामह के पास। लेकिन बोलने का मतलब क्या है, भगवान के भक्त कभी भी किसी जीव को क्लेश देने में सुख लूटते नहीं कभी। अनजाने से कुछ क्लेश हो जाता है दूसरे जीवों को, उसके लिए भी वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करते हैं, ये बताते हैं प्रभुपाद जी इधर। और इतना ही नहीं, परीक्षित बोल रहा है कि अगर कुछ दंड प्राप्त करना हो सिर्फ मेरे ऊपर आए, मेरे परिवार वालों के ऊपर न आए। ये उनकी प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में, सात आठ लाइन नीचे से अपड़िए, नीचे से सात आठ लाइन ऊपर, महाराज therefore महाराज परीक्षित डिजायर्ड द कैलामिटी टू फॉल ऑन हिम अलोन। क्या
इसीलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए, वे स्वयं कष्ट भोगकर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार से सोचता है, भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपनी भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना भगवान का सबसे बड़ा वरदान है।
तो इस तरह ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरे परिवार वालों को भी थोड़ा दंड का बंटवार किया जाए, नहीं, अपने आप के ऊपर लेने के लिए तैयार है वो, अपने गलती को मान रहा है, दंड प्राप्त करने के लिए तैयार है। लेकिन भक्त लोग एक ही इच्छा करते हैं कि भगवान को मैं कभी मत ना भूलूं, दंड के लिए डरते नहीं भक्त लोग, क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफ आता ही रहता है। ये तो दुकालय है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, हिमालय में बर्फ मिलता है, ये दुकालय में दुख मिलता है सबको, ये नई बात नहीं है। अगर आज एक दुख आता है कल दूसरा आता है, यही दुनिया ऐसा ही है। वो दुख से डर नहीं रहा है, सिर्फ उसको इच्छा है कि हम भगवान को कभी ना बोले। आगे देखेंगे आप, वो बोलेगा वो। तीसरा श्लोक का अनुवाद पढ़िए।
मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गो रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फल स्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन ना होने पाए।
देखिए बोल रहा है कि अश्लिष्य हूं मैं, और ये बोल रहा है कि मैं पापी हूं, अपने आप को कोस रहा है वो, क्योंकि ब्राह्मण और भगवत चेतना और गोरक्षा, ये तीन चीज राजाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो राजा लोग करते थे इन चीजों को, लेकिन मैंने ब्राह्मण को निंदा किया है, इसके कारण वो बोल रहा है कि कुछ भी मेरे ऊपर श्राप आए और मेरे सब धन दौलत इत्यादि को इत्यादि खत्म हो जाए, मिट जाए, इतना तैयार है। तो दंड अपने ऊपर प्राप्त करने के लिए वो तैयार है। इससे भगवान हम लोगों को महत्वपूर्ण चीज सिखा रहे हैं अपने जीवन में, कि भक्त लोग कभी भी भगवान से प्रार्थना नहीं करते कि हे भगवान हम हमारे जीवन में दुखों से हमको निवारण दे, ऐसे भक्त लोग कभी मांगते नहीं भगवान से। लेकिन भक्त लोग भगवान से मांगते हैं कि दुखों के बीच में हम आपको ना भूल जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि दुख हो सुख हो लेकिन दोनों में हम आपको ना भूले। हम संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तुवा ओ पद वरणे मारो भी राखो भी जो ये चा तो हार नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। भक्तों ठाकुर गा रहे हैं कि हे भगवान मैं धनी हूं नहीं तो गरीब हूं हो जाऊं, नहीं तो मैं विजय प्राप्त करूं जीवन में नहीं तो पराजय प्राप्त करूं, तो मैं जिंदा रहूं नहीं तो मरूं, किसी भी अवस्था में मैं आपकी सेवा को ना छोड़ूं, आपकी स्मरण को ना छोड़ूं, ये भक्तों का प्रार्थना होता है। भगवान भी भक्तों को यह नहीं बोलते हैं कि मेरे भक्तों को तकलीफ नहीं होगा, भगवान बोलते हैं कि जब मेरे भक्तों के जीवन में तकलीफ आता है मेरा स्मरण करते हैं तो मैं उनके साथ रहूंगा, ऐसे बोलते हैं भगवान। अर्जुन को तकलीफ हुआ युद्ध भूमि में, तो भगवान कृष्ण उनके साथ रहे क्योंकि अर्जुन ने स्मरण किया उनको। तो इस दुनिया में अगर तकलीफ भी होता है, हम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर ये तकलीफ नहीं होता तो हम भगवान की ओर मुड़कर उनकी ओर देखकर भागते नहीं, हम अपने ऐशारा में फंस जाएंगे। इस तरह परीक्षित किसी भी समस्या को सामने करने के लिए तैयार है। आगे पढ़िए और एक श्लोक, तो ये श्लोक भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है।
सचिंतयन् वित्तमता शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाक्यः ससाधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्।
ये बोल रहा है कि सचिंतयन इत्थम अतः अश्रणत, उसको जब पता चला कि उसको मालूम हो गया कि किसी ने संदेश लाया उनको कि आपको 7 दिन में आपका मृत्यु आ गया है, 7 दिन में आप छोड़ने वाले हैं एक तक्षक नाम का एक सर्प के द्वारा, वो ऋषि के पुत्र जो श्रृंगी उसका शाप है। तो राजा को जब मिला वो क्या बोल रहा है, ससाधु बेने न चिरे न तक्षका। ससाधु बेने का मतलब गुड न्यूज, उसको गुड न्यूज सोचा उसने, अच्छा संदेश मुझे मिल गया। आप सोचेंगे क्या अच्छा संदेश है क्या, आपकी मृत्यु की संदेश। अगर आपको लगता कि कोई बोलता आपको फॉरेन चांस मिलने वाला है तो बोलेंगे अच्छा चांस है, अच्छा न्यूज है। ये बोल रहा है इसको न्यूज मिला कि वो मरने वाला है, वो क्यों गुड न्यूज बोला है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, 6-7 लाइन के बाद पढ़िए। ओके, पांचवा लाइन पढ़िए। पाथ ऑफ परफेक्शन फ्रीज, 6 लाइन पढ़िए।
यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन है वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं। महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपना असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से राजनीतिक या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था।
हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है, यही मैंने टाइटल में दिया। क्या टाइटल में दिया, अगर आपको शाप मिला तो उसको सकारात्मक कैसे बनाए। वो लिखा था ना, इधर बताया गया आंसर उसका, क्या बताया गया है, परिस्थिति की मनोस्थिति देखिए, मनोगति क्या सोच रहा है मन में। उसने सोचा कि आज तक मैं राज्य कार्य में डूबा रहा हूं, दिन रात लोग कुछ ना कुछ कंप्लेंट लेके आते हैं, इसने ये गलती किया है उसको ये दंड दो वो दंड दो, सदा मैं खजाना के साथ रहता हूं, पैसा गिनता रहता हूं, इधर युद्ध करना उधर युद्ध करना, जैसे कलिराज को दमन करना, इस तरह के कार्यों में तो राजा को दंड देना होता है पापियों को, इस तरह के कामकाज में लगा हूं मैं, इसके कारण शांतिपूर्वक भगवत भक्ति करने के लिए समय नहीं मिलता है हम लोगों को, राजा को। इसलिए उसने सोचा कि अभी मेरा राज्य पदवी छीन लिया जाए यह मेरे लिए बड़ा लाभ है, क्यों मेरे हृदय में मैं अनाशक्ति पैदा कर लूंगा और 24 घंटा में भगवत भक्ति कर पाऊंगा, भगवान की लीला चेष्टाओं का श्रवण, भगवान की नामों का कीर्तन और भगवान के भक्तों का संग इत्यादि प्राप्त करके मैं वैकुंठ धाम लौटूंगा, जिधर नित्य निरंतर काल के लिए मैं हमेशा भक्ति में डूबे रहूंगा। इस तरह वो बहुत आनंदित हुए। देखिए, एक बार दक्ष प्रजापति ने शिव जी को श्राप दिया कि क्योंकि आपने उठा नहीं जब मैं सभा में आया, सब लोग उठ गए तुमने उठा नहीं ना शिव जी, जैसे उनको एक श्राप दिया उन्होंने। क्या श्राप था, आपको देवताओं के मीटिंग में मौका नहीं मिलेगा शामिल होने के लिए और आपको हम आहुति में आहुति जो देते हैं ना यज्ञ, इसमें उसमें यज्ञ का भाग आपको नहीं मिलेगा। तो शिव जी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको पहले से देवताओं की मीटिंग में जाने में इच्छा नहीं था। उनको बहुत पॉलिटिक्स चलता है ना इस मीटिंग्स में है, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा हो गया, हमको अपने मुफ्त हमको छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया हमको। और उनको अपेक्षा भी नहीं था कि हमको भाग चाहिए उसमें। लेकिन इस दुनिया में अनेक लोगों की अपेक्षा होता है कि हमारा नाम उस कमेटी में होना चाहिए, ये कमेटी में होना चाहिए, इसका भी हम मेंबर हैं। एक व्यक्ति था, उसका कार्ड दिखा है मुझे, वो लिखा है कार्ड में वो 20 अलग अलग लायंस क्लब रोटरी क्लब का मेंबर है, इसका मेंबर है, उसमें इस्कॉन को भी ऐड कर दिया, मैं इस्कॉन का भी मेंबर हूं अभी। तो लोग दिखाने के लिए बहुत अच्छा लगता है उनको, मैं इतने अलग अलग क्वारंटीन क्लब का मेंबर हूं, उसका मेंबर हूं, इसका मेंबर हूं। लेकिन महान भक्त जो है वो इस दुनिया से बिछुड़ कर, दुनिया से ऊपर उठकर भगवत भक्त में लगने के लिए मौका मिले तो उसको बहुत स्वागत करते हैं ऐसे है। आप इसी तरह पढ़ेंगे, जब स्वयंभू मनु प्रियव्रत महाराज को विनती करते हैं कि हे बेटा, उत्थानपाद का समय हो गया, ध्रुव का भी समय हो गया, अभी कोई राजकार करने के लिए आदमी नहीं, तुम गंधमादन पर्वत में आकर बैठकर नारद मुनि के शिष्य बनकर तपस्या कर रहे हो, बेटा वापस घर लौट आ जाओ, क्योंकि सारे दुनिया के शासन तुम्हारे हाथ में है। लेकिन प्रियव्रत बोलता है नहीं, हमको इच्छा नहीं, हमको सारे दुनिया के राजा का पदवी की इच्छा नहीं। बोलता है कौन? प्रियव्रत महाराज। वो दो बेटा में एक है, उत्थानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, आहुति, प्रसूति, 5 बच्चे हैं ना स्वयंभू मनु का। तो स्वयंभू मनु बुलाने के लिए जाता है गंधमादन पर्वत में, वो आता नहीं है। प्रियव्रत पिताजी को बोलता है, पिताजी मैं आपको आपकी इच्छा को नकारने के लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन समझ लीजिए हमको इस तरह के गंधमादन पर्वत में एक वैरागी बनकर नारद मुनि के मार्गदर्शन में हम शांति से आध्यात्मिक जीवन बिता रहे हैं, इसको छोड़कर हम सारी दुनिया का राजा का पद हमको नहीं चाहिए, बोलता हो। आप सोच लीजिए, अगर आपको भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं लोग, कितने लोग स्वीकारेंगे? स्वीकारेंगे कि नहीं? थोड़ा शंका है आपको? सारे भारत के प्रधानमंत्री, अगर नरेंद्र मोदी खुद बोल रहे हैं तुम आ जाओ बेटा, अभी मैं बहुत समय हो गया मेरा, तुम अभी करो, करेंगे आप? तो इस दुनिया में अगर इस तरह का बड़ा पद भी दिया जाता है तो सब लोग स्वीकारेंगे। लेकिन प्रियव्रत बोल रहे नहीं चाहिए हमको। और उनके पिताजी स्वयं मनु राजा हैं अभी, वो उनको हैंड ओवर करने के लिए तैयार है, बेटा ले लो, बेटा ले लो, बेटा ले लो। लेकिन बेटा बोल रहा है पिताजी आप ही रखो, आप ही रखो, आप ही रखो, ऐसे बोल रहा है वो। लेकिन आजकल देखा जाता है कि किसी पिताजी का बड़ा दुकान है, उसके उसके कभी कभी 2-3 बेटे भी होते हैं, वो सब दुकान को चलाने के लिए सक्षम है, तैयार भी है। पिताजी को बोलते हैं पिताजी थोड़ा रिटायर हो जाओ दुकान से, गीता भागवत पढ़ो। वो बोलता है बेटों को नहीं नहीं बेटा, मेरी मार्गदर्शन तुमको जरूरत पड़ेगा, A to Z मैं जानता हूं दुकान को, तुम सब बच्चे से हो। वो बच्चे बोलते हैं हम बच्चे थे पहले, अभी हमारा भी 30-35 हो गया है। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम उम्र में पड़ गए लेकिन अकल नहीं तुम लोगों को, मेरी जरूरत पड़ेगा, ऐसे बोलता है। तो पिताजी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, बच्चे भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं, झगड़ा होने के बाद पिताजी छोड़ता है। तो ऐसे देखा जाता है दुनिया में। लेकिन इधर देखते हैं कि प्रियव्रत ने भी बोला कि हमको राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि हम ध्यान करना चाहते हैं भगवान वासुदेव के ऊपर, नारद मुनि के शिष्य बनकर। और स्वयं मनु ऑलरेडी राजा है, वो छोड़ना चाहता है। जैसे अगर आपने हाथ में गर्म कोयला ले लिया, छोड़ेंगे ना आप, ऐसे राज्य को छोड़ना चाहता है, क्योंकि अभी वानप्रस्थ का टाइम आ गया उसका। वो सोचता है कि अभी हम वानप्रस्थ लेकर भगवत भक्ति करके वैकुंठ धाम वापस लौटेंगे, इधर दुनिया में पढ़ के क्यों रहे सोच रहा है। तो उसने क्या किया, बुद्धिमत्ता हो स्वयंभू मनु, सीधा गया ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जो है GBC जैसे हैं, बड़े हैं, उनको बोल दिया देखिए प्रियव्रत मान नहीं रहा है मेरा बेटा, आप थोड़ा समझाइए। तो ब्रह्मा जी ऐसे एक हंसवाहन में ऋषि मुनि देवताओं को साथ में लेते हुए नीचे उतरे, तो गंधमादन पर्वत में उतर कर प्रियव्रत को जाकर मिले। प्रियव्रत देखो तो तुम्हारा कर्तव्य है, अभी करो, तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, भगवान की इच्छा है कि तुम शासन करे सारे दुनिया के, ऐसे बोले। तो उसके बाद नारद मुनि ने भी आशीर्वाद दिया, उनको राजा बना सारे दुनिया का, कौन? प्रियव्रत। लेकिन जब स्वयंभू मनु छोड़ रहा था अपने राज्य को प्रियव्रत को देने के लिए, विषय विषम जलाशय ऐसे बताया गया है, वो अपने सारे दुनिया के को चलाने वाले राज्य को उसने एक विश्व का समुद्र माना उन्होंने, ऐसे विश्व के समुद्र को त्याग दिया उन्होंने, ऐसे बोला गया। तो इस तरह के उन दिनों में बड़े राज्य लोग जो भगवान के महान भक्त थे, इस दुनिया के संपत्ति जिम्मेदारी इत्यादि को त्यागने में उनको कुछ डर नहीं था, क्योंकि सही उम्र पर सही चीज करना चाहिए। अगर किसी का 50-60 हो गया तो उसके बाद बच्चों को लगा देते हैं काम धंधे में और खुद भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, जैसे गीता भागवत पढ़ना, वानप्रस्थ होकर विविध सेवाओं में जुड़ना। तो इस तरह परीक्षित ने भी सोचा कि ठीक है, अगर ऐसे श्राप मिला है 7 दिन में शरीर छोड़ना तो क्या समस्या, कुछ समस्या नहीं है हमको, वो तो भगवान का प्रेमी था, अभी भगवान के नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करते रहूंगा मैं। इस तरह आनंदित होकर उसने बोला कि इस श्लोक में बोलते हैं ससाधु मैंने, इसको सोचा कि अच्छा ही संदेश मिला है, ऐसे उसने सोचा। ऐसे ही एक बार यमलोक में यमराज ने प्रार्थना की थी भगवान कृष्ण को, हे भगवान इधर यमलोक में इतने कितने पापी लोग आते हैं, उनको हर एक व्यक्ति को दंड देना मेरा काम है, दंड देकर मैं ऊब गया, मैं थक गया, अभी मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए हमको, क्योंकि कार्य अच्छा कार्य नहीं है। देखिए अगर पुलिस वाला है सबको पिटाई करते रहता, मारो पिटो ऐसे करता रहता है तो थक जाता हो, तो उसको भी थोड़ा उन्होंने बोला भगवान को कि मुझे ऐसा एक समय दीजिए मैं आपकी भगवत भक्ति में डूब कर रहूं, ऐसे उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने बोला तदास्तु, चिंता मत करो तुमको हो जाएगा वो। तो एक समय एक मंडूक मुनि नाम के एक मुनि के आश्रम में ये कुछ चोर लोग आकर छुप गए, तभी पुलिस लोग आकर पकड़ कर चोरों को लेके जाते समय उन मंडूक मुनि को भी अरेस्ट करके लेके गए हो, वो तो निरपराधी थे, उनको भी लेके गए वो लोग। लेकिन वो चोरों को दंड देते समय राजा ने मंडूक मुनि को भी एक बड़ा दंड देने ही वाला था, बाद में उनको पता चला ये ऋषि है मुनि है, उनको छोड़ दिया। तो यमराज के सामने जाकर मंडूक मुनि ने पूछा, यमराज क्या गलती किया मैंने जिसके कारण तुमने मेरे लिए राजा के द्वारा दंड देने वाले थे, क्या गलती था? तब यमराज ने अकाउंट देकर बोला कि देखो आपके बचपन में आपने ये बचपन में बच्चे लोग पकड़ते हैं ना ये तितली को पकड़ते हैं, तितली इसको क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं उसको, करके वो ये करता है उसको पकड़ते हैं बच्चे, आपने ऐसे बच्चे ऐसे कुछ तितली को पकड़कर आपने उसको दुख दिया, इसलिए आपको भी थोड़ा दंड मिलना था, ऐसे बोला। तो मंडूक मुनि कुपित हो गए, वो बोले कि देखो बचपन में बचपना में जो बच्चे लोग अनेक गलत काम करते हैं उसके लिए दंड, वो दंड के लिए योग्य नहीं है बच्चे, तो मैंने बचपन में किया लेकिन तुमने दंड दिया मुझे, इसलिए तुम्हारा गलती हो गया, तुम्हारा मिस्टेक हो गया दंड देने में, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम एक शूद्र बन जाओ। तो इसके कारण यमराज का पतन हुआ उनकी पदवी से। उस समय अरियामा नाम के दूसरे देवता आकर उनकी पोस्ट को ऑक्युपाई किया, वो बैठ गए उसमें। तो उस समय यमराज जब यमलोक छोड़कर आए वो विदुर बने उस समय, ये लेकिन उनको शाप क्यों मिला वो यमराज को, क्योंकि उन्होंने भगवान से पहले प्रार्थना की थी कि मैं यमराज की पदवी को छोड़कर शुद्ध भक्त बनना चाहता हूं, इसलिए भगवान ने उनको शुद्ध भक्त बना दिया विदुर के रूप में। तो भगवान कैसे कैसे आयोजन करते हैं देखिए है? ऐसे है? तो विदुर बनकर क्या हुआ, सभा में बैठकर दिन ब दिन उनको देखना पड़ा कि दुशासन, दुर्योधन, शकुनी इन लोगों के षड्यंत्र को देखना पड़ा, और पांडव लोग कितना यातना दे रहे हैं ये लोग पांडवों को है? तो ये देख देख कर सभा में उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सोचा कि पहले मैं यमलोक में था उधर सब दंड दे रहा था, लेकिन इधर आने के बाद वही पॉलिटिक्स इधर भी चल रहा है, ये दंड विविध तरह की गलत चीज चल रहा है इधर, उधर भी सोच रहे थे कि कुछ मौका मुझे मिले भगवान की स्मरण करने के लिए। तब एक दिन दुर्योधन ने उनको जोर से डांटा, ये मामा जो है ना हमारे विदुर बड़ा षड्यंत्र रचा है, चाचा चाचा ये चाचा जी जो है ना देखो ये पांडवों के लिए अनुकूल चीज अनेक चीज करता है, चुपके चुपके ये सोचता है कि हमको मालूम नहीं, हम जानते हैं, इसको सिर्फ जान से छोड़ो बाहर, इसको भगा दो इधर से, ऐसे चिल्लाया उसने। तब विदुर जी जब महल को छोड़कर बाहर निकले उनको बहुत एक तीक्ष्ण बाण अगर आपके छाती को छेदता है तो आपको कैसे लगेगा, ऐसे उनको लगा कर्ण बाण, तो कुछ क्षणों के लिए वो उनके अंदर एक विह्वलता का अनुभव हुआ, उनको विचलित हो गए, वो विचलित हो गए कुछ क्षणों के लिए, लेकिन तुरंत उन्होंने सोचा कि देखो ये जो दुर्योधन मुझे डांट रहा है, ये तो उनका बांझा है, क्या वो क्या बोलते हैं दुर्योधन, भतीजा, भतीजा है ये, भतीजा है, फिर भी क्यों मुझे डांट रहा है, समझ नहीं रहा मेरे बारे में। मैं धृतराष्ट्र को कितने अच्छे अच्छे उपदेश दिया मैंने उनकी भलाई के लिए, दुर्योधन की भलाई के लिए भी, लेकिन ये भतीजा गलत समझ बैठा है मुझे। तो फिर भी उन्होंने क्या सोचा, इसने निंदा कर दिया, अभी हमें महल में नहीं रहना चाहिए। लेकिन तुरंत उन्होंने तत्क्षण एक उपाय ढूंढा, क्या ढूंढा, मैं अभी इधर से निकलूंगा तीर्थ यात्रा में, तो हम इसे तीर्थ यात्रा करते 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 हम पहुंच जाएंगे द्वारका में और कृष्ण से मिलेंगे। इधर सभा को छोड़ने की इच्छा पहले से था मुझे, अभी दुर्योधन ने उसको और प्रोत्साहन दे दिया उसी आइडिया को, ये दुर्योधन के वरदान है मेरे लिए, ऐसे उन्होंने सोचा। तो डांट का ये, लेकिन उसको वरदान के रूप में स्वीकारा उन्होंने। इस तरह बुद्धिमान थे विदुर जी, शुद्ध भक्त थे। तो ऐसे जाते जाते चलते चलते कुछ गंगा में यमुना में नहाते थे, लेकिन उसके बाद आगे चलते समय वो उसको पहुंचते भी नहीं थे, सूर्य के कारण वो सूख जाता था उनका शरीर, तो उसके आगे की तीर्थ में जाकर नहाते थे। तो एक स्थान में उन्होंने मैत्रेय ऋषि को प्राप्त किया, तो उनके पास जाकर पूछा कि थोड़ा बताइए भगवान के बारे में। तो मैत्रेय ऋषि महाभारत से शुरू किया उन्होंने, तुरंत विदुर ने बोला महाभारत के बारे में कुछ मत बोलिए, हम तो महाभारत ड्रामा हमारे सभा में देखा है पूरा, हम तो दुर्योधन दुशासन के बीच में ही पले पड़े थे, उधर पड़े थे हम लोग, बस वो सब पॉलिटिक्स सुन लिया, अभी भागवत बोलिए आप। ऐसे मैत्री से भागवत सुना उन्होंने। तो इस तरह विदुर जी ने भी एक शाप को, दुर्योधन ने जो शाप दिया उनको, निकाल दो इनको सभा से, उसको एक वरदान के रूप में लिया। ऐसे ही परीक्षित भी ले रहा है, सोच रहा है कि ये शाप के कारण मैं गंभीर बनूंगा भक्ति में, और सीरियस बनूंगा भक्ति में, तीव्र हो जाऊंगा। एक एक माता जी अपने गुरु के पास बोले कि महाराज जी मेरा मेरे जीवन में बहुत बड़ा शाप है। बोली वो क्या शाप है, कि मेरा पति जो है भक्त नहीं बन रहा है, वो भक्त नहीं है, माला नहीं करता, मंदिर में आता नहीं, मैं बहुत बार मैंने प्रयत्न किया लेकिन भक्त बनता नहीं, क्या करे। तो महाराज बोले तुम्हारे लिए बड़ा वरदान है। बोला क्यों, देखो तकलीफ के बीच में ही जीव भगवान को स्मरण करता है, अगर पति भी भक्त बन गया तो तुम भी भक्त बन गए, तो दोनों धीरे 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 ढीला पड़ जाते हैं कभी है? बोला कि अगर वो भक्ति में नहीं है, इसलिए तुम उसको भक्ति में जुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रही हो, और तुम भगवान को प्रार्थना कर रही हो, वैष्णव को प्रार्थना कर रही हो, नम्र बन गई हो, तो पति तुमको और नम्र बनाता जा रहा है, बहुत अच्छा है, ऐसे बोले। इस तरह हम लोग भी अपने जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां आते हैं, हमें तुरंत सोचना चाहिए कि इन कठिन परिस्थिति को लेकर हम कैसे उसको सुधारे। एक बार बक्सन सरस्वती ठाकुर ने बोला कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई धोबी है, तुम्हारे कपड़े को लेकर वो अच्छी तरह धो धोकर फोल्ड करके आपको रोज देता है, तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे कि नहीं, आप शुक्रिया, फ्री में, मुफ्त में, आपको पैसा नहीं बनना है, मुफ्त में दे रहा है, कितने लोग शुक्रिया बोलेंगे उसको, करेक्ट है ना। तो ये बोलकर बसंत ठाकुर ने बोला कि अगर कोई भक्त भी तुम्हारे ऊपर दोषारोपण करता है तो तुम्हारा मित्र है वो, क्यों, क्योंकि उसके दोषारोपण के बारे में सोच सोच कर तुम सुधरने के लिए प्रयत्न करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा बहुत कुछ गलती है तुम कर रहे हो, तो उसको वो पॉइंट आउट कर रहा है, वो जब भी बोलता है वो नहीं है मेरे में, नहीं है मेरे में बोलते हो, तो बार बार सोच सोच कर तुम सुधरने के लिए प्रयत्न करते हो, इसलिए वो तुमको सुधार रहा है, उसको शुक्रिया बोलना चाहिए आपको। इसलिए अगर आपको डांटते हैं कोई आप अपने दोष देखते हैं तो क्या बोलना चाहिए उनको, थैंक यू प्रभु, इतना अच्छे तरीके से आपने गलती ढूंढा प्रभु जी हमें, बहुत अच्छे तरीके से बताया आपने, शुक्रिया आपको, और ऐसे आप सेवा करते रहिए, हमको सुधारते रहिए, ऐसे हमको बोलना चाहिए। इस तरह हम लोग अपने जीवन में अनेक सबक सीख सकते हैं परीक्षित से। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि क्या परीक्षित समीक ऋषि के पास कुछ संदेश भेजा नहीं क्या, कि आपके बेटे ने इसे गलत कर दिया, उस शाप को मिटा दीजिए, ऐसा कुछ कीजिए, नहीं कुछ नहीं किया, परीक्षित को मालूम था कि समीक ऋषि पहले पहले से बहुत पहुंचे हुए आत्मा है, बड़े महात्मा है, तो अभी उनका बेटा ने गलती कर दिया, पहले से वो दुखित है। अगर परीक्षित उनको वो कुछ संदेश भेजेगा तो और भी दुखित हो जाएंगे वो, इसलिए उन्होंने कुछ संदेश नहीं भेजा उनको। तो आगे पांचवा श्लोक है,
अतो विहाये मम मम च लोकम विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णांग्रि सेवा मदिमन्यमान उपाविशत् प्रायममर्त्यनद्याम।
प्रश्न क्या किया, आपने सब तरह के बाकी सब कामकाज को छोड़कर अभी गंगा के तट में जाकर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्रत करके भगवान की सेवा करने की इच्छा से वो बाकी सब मार्गों को त्याग कर वो गंगा के तट में जाकर बैठ गए। ऐसे आगे का अनुवाद पढ़िए। अकेले ऐसे आगे दो तीन श्लोक छोड़कर हम आगे जाते हैं ताकि ये सेक्शन के बाद अगले सेक्शन आने वाला है, अभी महत्वपूर्ण सेक्शन आने वाला है, वो पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे अभी है। अभी हम आठवां श्लोक लेंगे, आठवां से लेकर चौबीसवां श्लोक तक कैसे परीक्षित अपने आप को सौंप पाया ऋषि मुनियों के श्री चरणों में है, नहीं उसका एक पिक्चर दिखाएंगे इधर आपको। ये परीक्षित सभा में आने के बाद सोच रहा है और श्राप के संदेश मिला उनको है, और उसके बाद सब छोड़कर गंगा के तट में आकर बैठा है, और तब सारी दुनिया के अनेक ऋषि मुनिया उधर इकट्ठित हो गए। उधर उनको पता चला कि परीक्षित इस तरह गंगा के तट में बैठकर श्रवण करने वाला है साधु महात्माओं से, तो साधु महात्माओं ने सोचा कि अच्छा संघ मिलेगा उधर हमको 7 दिन के लिए। साथ साथ उनका परीक्षित के ऊपर बहुत प्रेम था उनको, तो वो आ पहुंचे, सब ऋषि मुनि आ पहुंचे उधर। तो सब ऋषि मुनियों को देखकर अभी उनकी प्रशंसा करेगा और दंडवत प्रणाम भी करेगा ऐसे परीक्षित। ये हम आगे के श्लोक में पढ़ते हैं, आठवां श्लोक।
तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयस्स शिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः।
अनुवाद पढ़िए।
उस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्यों के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे।
प्रभु जी तात्पर्य में बोलते हैं कि और ऋषि मुनि उधर नहीं आए गंगा के तट में, गंगा में नहाकर अपने पापों से मुक्त होने के लिए नहीं आए, वो क्यों आए, भागवत कथा सुनने के लिए आए वो। क्यों, क्योंकि अनेक पापी लोग जाते हैं नदियों में नहाकर अपने पाप को छोड़कर आने के लिए, इसलिए नदियां काले काले बन जाती हैं, लेकिन ऋषि मुनियां जब उसमें नहाते हैं उस पाप को मिटा देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सुबह एक व्यक्ति अपने पीछे एक ऐसे ड्रम जैसा रहता है, हाथ में एक स्टिक होता है, वो उसमें फिनाल ऐसा कुछ मेडिसिन होता है उसका, जैसे जो गटर होता है उधर जाकर ऐसे थोड़ा फेंकता है उसको, उधर के सब मच्छर उड़ जाते हैं, उधर मच्छर डर जाते हैं उस दवाई से, है ना, दवाई डालते हैं ना उसको, अंग्रेजी में डिसइन्फेक्टेंट बोलते हैं उसको है। तो इस तरह ऋषि मुनि जब आते हैं नदियों में जो गंदगी है, जो पाप कर्म छोड़ कर गए हैं, वो सब पाप मिट जाता है, नदियां मुक्त हो जाते हैं पापों से। इसलिए ऋषि मुनियां नदी में सब नहाने के लिए नहीं आए, लेकिन बाकी ऋषि मुनियों की संग लेने के लिए वो आए, और राजा महाराज परीक्षित को आशीर्वाद देने के लिए भी आए, वो बहुत राजा को पसंद करते थे, ऐसे प्रभु जी बोलते हैं। तो कौन कौन आए थे आगे के श्लोक में, नौवां और दसवां पढ़िए, नौ ओनली ट्रांसलेशन पढ़िए।
ब्रह्मांड के
कौन कौन आए थे उधर, नाम दिया है उधर,
यथा अत्रि च्यवन शरद्वान अरिष्टनेमी भृगु वशिष्ठ पराशर विश्वामित्र अंगीर परशुराम कुतथ्य इंद्रप्रमद इद्मवाहु मेधातिथि देवल आर्ष्टिषेण भारद्वाज गौतम पिप्पलाद मैत्रेय और्व कवश कुभ्ययोनि द्वैपायन तथा महापुरुष नारद।
तो ये सब ऋषि हैं। अभी अगले श्लोक में 11वां श्लोक में देवताओं के नाम दिया है, सेंटली डेमिगॉड्स, और राजा लोग और देवता लोग और अरुणादेव ब्राह्मण, ऐसे अनेक लोग जो भी आए उनका नाम दिया है उधर। और 12वां श्लोक पढ़िए अनुवाद।
जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया।
हाँ, देखिए परीक्षित उनको दंडवत प्रणाम करके अपने इच्छा जो है उसको प्रकट कर रहा है उनको। हाँ? वो अभी बोलने वाला है कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ इधर। इसका मतलब है उनको बोलने वाला है कि मैं अभी गंगा के तट में बैठकर 7 दिन उपवास करूंगा। हाँ? कुछ कहूंगा नहीं, दिन रात और दिन रात जागरण रखकर, हाँ, भगवान की कथा सुनकर शरीर त्यागूंगा 7 दिन के बाद। तो इस तरह ये ऋषि मुनियों को बोलकर उनके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है परीक्षित। देखिए इस तरह करने से क्या होता है, वो ऋषियों के ऊपर निर्भर है। हाँ? और नम्रता प्रकट कर रहा है और अपने अहंकार को खत्म कर रहा है वो। इस तरह कृष्ण के आश्रय ऋषि मुनियों के द्वारा कृष्ण की इच्छा अनुसार वो ले रहा है। इस तरह आप देखेंगे परीक्षित महाराज की सद्भावना, सर्वप्रथम उनको देखते ही ऐसे सर झुका उसने, राजोवाच अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूरात् विसृष्टं बदगर्ह्य कर्म। अनुवाद पढ़िए।
भाग्यशाली राजा ने कहा, निस्संदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूं जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतया आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं।
देखिए ऋषि मुनि लोग दो लोगों से दूर रहना चाहिए उनको, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। एक है राजा, दूसरा है स्त्री। ये दोनों से जो जो संत महात्मा है उनको दूर रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तब अद्वैताचार्य सर्वभट्टाचार्य ने उनको विनती किया कि राजा प्रताप रुद्र जो है ये महान भक्त है कृष्ण की और आपके बड़ा प्रेमी है और आपको मिलना चाहता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना किया। निष्किंचनस्य भगवन भजनोन्मुखस्य पारंपरम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयीना मत योषिताम च हा हंत हंत विषभक्षण तो अप्य साधु। वो बोलते हैं कि हे भट्टाचार्य, आप कैसे मुझे ऐसे बुला सकते हैं, मैं तो एक वैरागी हूं, साधु हूं, मैं राजा और स्त्री इनके निकट कभी नहीं आ सकता हूं, इसके बदले अच्छा है कि तुम विष दे दो, मैं पीकर मर जाऊंगा जानबूझकर। वो उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि राजा हमेशा पैसा और पॉलिटिक्स राजनीति कूटनीति इत्यादि के बीच में रहता है, और साधुओं को स्त्री का निकट संग नहीं करना चाहिए। तो इन दोनों से दूर रहना चाहिए मुझे, खास करके जो व्यक्ति अब भगवत नाम लौटना चाहता है उसको। अभी देखिए हम सोचेंगे कि स्त्रियां क्या निम्न है, क्या क्या संग नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्त्रियों के लिए पुरुष स्त्री है, पुरुषों के लिए स्त्री स्त्री है, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। फॉर मैन वुमनली एसोसिएशन इज डेंजरस, फॉर वुमन इंटीमेट एसोसिएशन विद मैन इज डेंजरस, दोनों बोलते हैं प्रभुपाद जी। तो इसलिए हर एक व्यक्ति, चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रभु पुरी में थे तब अनेक वैष्णव लोग आ रहे थे बंगाल से, वो लोग दंडवत प्रणाम किया और उनके पीछे थी स्त्रियां, वो दूर से दंडवत प्रणाम कर रही थी महाप्रभु को। महाप्रभु ने उनकी उपस्थिति को भी माना और उनसे बात भी किया। महाप्रभु ने बोला उनको, हे धर्म पत्नियों, आपके पतियां जितना पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, वैष्णव, महान वैष्णव है, ऐसे ही आप भी वैष्णवी हो। ऐसे उनकी उनकी प्रशंसा की महाप्रभु ने। लेकिन महाप्रभु राजा स्त्री से निकट संग नहीं करते थे। ऐसे यही बोल रहा है ये परीक्षित कि हे ऋषि महात्मा, ऋषि मुनि महात्मा लोग, देवता लोग, आप सब आए हो, आप मेरे जैसे राज सिंहासन में बैठे हुए। राजा जो होता है, जो हमेशा विविध तरह के दुनियादारी चीजों में पड़ा रहता है, कुछ कुछ राजा लोग कभी कभी शराब भी पीते हैं, कभी अनेक स्त्रियों के साथ शादी करते हैं, कभी कभी दासियों को भी पुत्र दे देते हैं, कभी कभी ये पड़ोस के राजा को अनावश्यक मारकर उसके राज्य को भी हड़प कर लेते हैं। इस तरह के कुकर्मों से फंसा हुआ राजा जो होता है पापी है। तो संत महात्मा लोग जो भगवान के श्री चरणों के धूलि में रहने वाले, ऐसे राजाओं के निकट कभी नहीं आते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग इतने दयालु हो कि मेरे जैसे पतित राजा जो अभी राज्य को छोड़कर भगवत ध्यान में लगना चाहता है, उसको संग देने के लिए आप सब आए हो, ऐसे बोलता है। लेकिन क्या परीक्षित उस श्रेणी का राजा था क्या? वो तो महात्मा था खुद ही। वो भगवान की महान भक्त था, विष्णुराट था, भगवान कृष्ण ही खुद उसको प्रेम करते थे, फिर भी अपने बारे में नीच बोल रहा है। देखिए, तो हम लोग भी अपने आप को बड़ा कभी नहीं मानना चाहिए। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम भक्ति में आगे तो हम महान हैं, हम दूसरों को उद्धार करेंगे, इस तरह की बातें लोग सोचते हैं। लेकिन हर एक को सोचना चाहिए, जैसे मेरा जन्म हुआ था एक शैवट परिवार में, तो हम पहले भस्म पान देते ऐसे है, बड़ा भस्म ऐसे, तो IIT में ऐसे भस्म पान कर, धोती पान कर घूमते थे और मायावादी किताबों को, अनेक किताबों को पढ़ते थे पहले, तो वैष्णव पंथ में आने के पहले। उसके बाद वैष्णव का संघ प्राप्त हुआ, उसके बाद कीर्तन भजन गीता भागवत इत्यादि पढ़कर वैष्णव सिद्धांत समझ में आया। उसके बाद गुरु प्राप्त हुए, गुरु के आश्रय लेकर हम भक्ति में जुड़े। तो हमको भूलना नहीं चाहिए कभी कि हमारे भक्ति में आने के पहले हम इतना इधर उधर घूम रहे थे, अलग अलग संस्थाओं में अनेक मायावादी सन्यासियों से मिला, सब लोग हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे थे, तो कोई भक्ति प्रदान नहीं कर रहे थे ऐसे। तो हम लोग ये बात सोचना चाहिए कि हम कितने जटिल जीवन बिताकर अंत में हम इस तरह का दिव्य भक्ति मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह परीक्षित भी अपने बारे में बहुत नीच सोच रहा है। तो हर एक भक्त को इस तरह सोचना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण थे, अवगुण अभी भी हैं, और मेरे में त्रुटियां क्या है, कमियां क्या है, उसके बारे में थोड़ा सोचना आवश्यक है भक्तों के लिए। कभी कभी क्या होता है, भक्त भक्ति में आने के बाद, दो चार साल होने के बाद सोचता है कि अभी मैं बड़ा प्रचारक बन गया, इतने अनुयायी मिल गए, इस तरह अपने आप को गर्व करते हैं लोग। लेकिन भक्तों को अपने पूर्व जीवन के बारे में सोचना आवश्यक है। एक हमने कहानी सुना, एक राजा था, उसके मिनिस्टर ने एक आदमी को लाया उनके पास। वो बोला कि ये आदमी कुछ दूर प्रदेश से आया है, लेकिन ये आदमी बहुत बुद्धिमान है, बहुत हार्ड वर्क करने वाला है, परिश्रम करने वाला है, साथ साथ बुद्धिमान भी है, इसलिए हम लोगों ने लाया, आप अपने सभा में ले लीजिए। वो बहुत गरीब आदमी था, फटा कपड़ा पहनता था वो, बहुत गरीब खानदान में जन्मा था वो। लेकिन राजा ने देखा, एक हफ्ते में राजा ने देख लिया कि बहुत बुद्धिमान, अच्छा काम कर रहा है, उसको बड़ा अपने मिनिस्टर बना लिया उन्होंने। तो मिनिस्टरों में एक हो गया, मंत्रियों में एक हो गया वो, तो और मशहूर मंत्री बन गया वो मंत्रियों में। तो बाकी मंत्री जलने लगे, अरे ये बाद में आया, ये हमारा जूनियर है, लेकिन हमसे बाकी चढ़ गया ऊपर, राजा इसको बहुत मानता है। तो एक दिन राजा ने देखा कि सब मंत्री जल रहे हैं, तो राजा ने क्या बोला, बाकी मंत्रियों को बुलाया, देखा कि एक पेड़ के नीचे कोई और व्यक्ति कोई इधर उधर चल रहा था ऐसे। राजा ने बोला कि देखो कौन है, नाम क्या है उसका, देख कर आओ। तो एक मंत्री गया, उसका नाम पूछकर वापस आ गया। राजा ने पूछा नाम क्या है, उसका नाम बोला, किधर से आया है, मंत्री बोला मालूम नहीं बोला। दूसरे मंत्री को भेजा, तुम पूछ कर आओ। तो किधर से आया करके पूछकर आया। तो उसने पूछा कि इधर क्यों आया है, राजा ने पूछा, मालूम नहीं था तो तीसरा मंदिर गया। ऐसे चार चार पांच पांच मंदिर चक्कर मार रहे थे। तो राजा ने उस आदमी को बुलाया जो मैंने बोला पहले, बुद्धिमान, उसको बुलाया, बोला कि वो जो आदमी कड़ा है, क्या है नाम उसका, पूछ कराओ। तो उधर गया, वो 10 मिनट बिताया उसके साथ, वापिस लौट आकर पूरा पूरा बोल दिया, उसका नाम ऐसा है, उधर से आया है, उसका बहिन इधर शादी किया है, उसके बहिन का बहन के घर में आया है, और इधर 2 हफ्ता रहने वाला है, और सज्जन है, और उससे हमारे राज्य के लिए कुछ समस्या नहीं है, सब कुछ बोला उसने। राजा ने बोला देखो कितना बुद्धिमान है, देखो इसलिए मैं इसको प्रशंसा करता हूं हमेशा। ऐसे बोले, अभी मिनिस्टर लोग और जलने लगे पहले से, हा? अभी सोच रहे थे अरे कुछ तो षड्यंत्र रचाना पड़ेगा इसके टांग खींचने के लिए, है ऐसे सोच रहे थे। एक दिन एक मिनिस्टर ने देखा कि ये व्यक्ति, ये मिनिस्टर जो था, वो ऐसे कमरे में जाता था और बाहर आता था, उसको लॉक करके आता था। तो सब मिनिस्टर को उसने दिखाया, देखो 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 वो एक कमरे में जाता आता है, मुझे लगता है कि राजा के सब खजाना सब को धीरे धीरे चोरी करके करके उस कमरे में आकर रखता है, निकल आता है, किसी को मालूम नहीं, चाबी उसके ही हाथ में है, वो चाबी वो लोग चोरी करने के लिए प्रयत्न किया, कर नहीं पाए। वो एक दिन राजा को ही बोल दिया वो लोगों ने, राजा देखिए ये कमरे में जाकर इतना धन दौलत इकट्ठा किया उसने, सब आपके खजानों को लूट लिया इसने। तो राजा को आश्चर्य हुआ, ठीक है चलो, सब मंत्रियों को भी लेकर गया वो। तो वो मिनिस्टर को भी बुलाया, तुम वो कमरा खोलो। तो मिनिस्टर बोला कि नहीं नहीं राजा कुछ नहीं है अंदर। बोला नहीं नहीं मुझे देखना है, सब मंत्री देखना चाहते हैं। तो चाबी उसको खोलकर अंदर गया, तो बड़ा एक बक्सा था। तो राजा ने पूछा कि ये बक्सा के अंदर क्या है, वो बोला नहीं नहीं राजा छोड़ दो, छोटी सी बात है, आप इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो मंत्री लोग बोले अभी हमें पता चल गया, क्यों बोलता है, देखो मन अंदर बड़ा पड़ा है सब रत्नों से, सोना चांदी से। तो एक मंत्री ने उसको खोला, अंदर क्या पड़ा था, उसके पुराने जो धोती कुर्ता जो फटा हुआ था, जो पहले पहले पहनकर उस राज्य में आया था, वो रखा गया था। तो राजा ने उसको ऐसे उठाया तो उस मिनिस्टर की आंखों से आंसू बहने लगा। वो बोला कि हे राजा, मैं इसको रोज आकर क्यों देखता हूं, आपने इतना ऊंचा पदवी दिया है मुझे, मैं गर्वित ना हो जाऊं, मुझे याद रखना चाहिए कि मैं आपके राज्य में इसको पहनकर आया, इतना मैं गरीब था, लेकिन आपने ऊंचा पदवी दिया है, गर्वित ना होने के लिए और याद रखने के लिए मैं इधर आकर इस डब्बा को खोलकर रोज मैं देखता हूँ। ऐसे बोले, राजा इतना खुश हो गया, उसको और एक प्रमोशन दे दिया उसको, अरे बाकी लोग जलते रहे ऐसे। तो बोलने का मतलब क्या है, हम लोग भूलना नहीं चाहिए कि हम कितने पतित अवस्था में थे पहले, अभी थोड़ा भक्त बन गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बड़े बन गए। भगवान को भूलना नहीं चाहिए, भक्तों के संग को भूलना नहीं चाहिए, ये बताया जा रहा है। एक माता एक बहुत बड़ी नतनी पहनी थी अपने नाक के ऊपर, ऐसे आकर अपने सब सखियों के सामने खड़े हो गया, ऐसे दिखाती हुई ऐसे, सब लोगों ने बोला कि पता चल गया हमको, तुम तो नया नया पहनी हो। उन्होंने पूछा कि तुमको किसने दिया, वो बोला कि हमारे पति गल्फ से लेके आए हैं, इतना बड़ा नतनी। तो वो कवि गाया एक गीत, उसमें बोल रहा है कि वो नतनी को पहनकर तुम गर्व कर रही हो, कि पति ने उसको लाया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम याद नहीं रखती हो कि तुम्हारे नाक को किसने बनाया, भगवान ने नाक बनाकर दिया उसके बाद नतनी पहनती हो, उनको बोलो मत, ऐसे बोलता है, गर्व करते करते भगवान को बोलो मत। इस तरह परीक्षित भी अपने गर्व को छोड़कर एकदम आने वाले आप देखेंगे ये 3-4 श्लोक है उसमें किस तरह वो बोलेंगे। देखिए ये तो अभी श्लोक बोला मैंने अभी आप पढ़िए परपोट तात्पर्य पढ़िए पहले कुछ लाइन पढ़िए।
धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र धोवन इत्यादि को काफी दूर ले जाकर डालना चाहिए, भले ही घर से लगे स्नानागार मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हो, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्द में आध्यात्मवादी लोग सामान्यतया ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो भगवान की सृष्टि की बाह्य सुंदरता द्वारा अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से आध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छायारूप प्रतिबिंब मात्र है। अतएव वे राजसी ऐश्वर्य या इसी तरह की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते।
तो इस तरह है। आगे जाकर बताया गया है कि कैसे परीक्षित सब तरह के ऋषि मुनियों को देखकर सबको अपने अपने आदर प्रदान किया, इस तरह से बताया है। तो आगे जाते हैं और एक श्लोक।
तस्यैव मेघस्य परावरेषो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्व भिक्ष्णम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशुधत्ते।
बढ़िया, अनुवाद पढ़िए।
आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने के लिए भगवान मेरे समक्ष इस तरह प्रकट हुए हैं कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं।
देखिए परीक्षित, हालांकि वो शुद्ध भक्त है फिर भी क्या बोल रहा है, मैं गृहस्थ जीवन में आसक्त हो गया, सोचता था कि मैं बड़ा राजा हूं, सारी दुनिया को संभाल रहा हूं, कली को दमन किया हूं और मेरा घर, मेरे वंश इत्यादि इस तरह सोचते हुए मैं घर और घर के काम काज में पूरा मैं आसक्त हो गया, इसे अपने आप को कोस रहा है। ये सत्य बात है क्या? ये गलत है। वो हमेशा भगवत चिंतन में डूबा था फिर भी अपने आप को ऐसे बोल रहा है। नंदा बाबा भी बोलते हैं कि गर्ग मुनि को बोलते हैं महत् विचलनम पुंसाम गृहिणाम दीन चेतसाम निश्रेयसाय भगवान नान्यते कल्पिता क्वचित। वो बोलते हैं कि हे गर्ग ऋषि, मैं नंदा बाबा हूं, एक वैश्य हूं। हम वैश्य लोग हमेशा पैसा को गिनते रहते हैं, हमेशा घर के बारे में सोचते रहते हैं। गृहिणाम दीन चेतसाम, हम पतित हैं, दीन चेतस हैं हम लोग। आप जैसे ब्राह्मण लोग सदा नित्य निरंतर आप लोग भगवत चिंतन में, भगवत स्मरण में, भगवत कार्य कैंकरी में आप डूबे रहते हो। इस तरह बोल कौन रहे हैं? नंद बाबा है? महत विचरणम पुंसाम, आप जैसे महत लोग विचरण करते हो, अलग अलग घरों में जाते हो उनको भक्ति भावना प्रदान करने के लिए, लेकिन मेरे जैसे पतित वैश्य बोलते हैं। क्या वो पतित है? क्या वो उनके, वो किसके पिता है? वो कृष्ण के पिता है, लेकिन अपने आप को ऐसे सोच रहे हैं ऐसे। इस तरह इधर भी परीक्षित अपने आप को कोस रहे हैं। और एक बात बोल रहे हैं कि भगवान मेरे आसक्ति को देखकर मुझे, मेरे आसक्ति को छुटवाने के लिए एक भय दिलाकर मेरे आसक्ति को छुटवा रहे हैं भगवान, ऐसे बता रहे हैं परीक्षित। कभी कभी माता पिता बच्चे को थोड़ा डरा कर उसके हाथ से छीन लेते हैं अगर कुछ गलत चीज को उठा लिया हो। जैसे मैंने एक बार ये नाफ्थलिन बॉल पिताजी लेके आए थे, वो मिठाई जैसे दिख रहा था, वो एकदम सफेद सफेद सुगंध भी आया, सुगंध भी था वो। तो मैं चार पांच उठा लिया हाथ में, तो माता जी पीछे पड़ी, मेरे कपड़े को पकड़कर मेरे हाथ से सब छीन लिया और एक लाफा भी दे दिया मुझे ऐसे। इस तरह बोल रहे हैं कि अगर कुछ गलत चीज से अगर हम आसक्त हो जाए तो भगवान हमको डरा कर उस आसक्ति को छीन लेते हैं भगवान, ऐसे भगवान ने कर दिया करके कौन बोल रहे हैं? परीक्षित। लेकिन परीक्षित को डर भी नहीं मृत्यु से, अंदर आसक्ति भी नहीं था और भगवान उनको अनासक्ति पदने के करने के लिए नहीं किया था। ये हमको सिखा रहे हैं परीक्षित, हम लोगों को सिखा रहे हैं। पर तात्पर्य पढ़िए।
महाराज परीक्षित यद्यपि महान भक्त पांडवों के परिवार में उत्पन्न हुए थे और यद्यपि उन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए दिव्य आसक्ति की शिक्षा प्राप्त थी, तो भी उन्हें संसारी गृहस्थ जीवन का आकर्षण इतना प्रबल लग रहा था कि उन्हें भगवान की योजना द्वारा विलग किया जाना पड़ा। भगवान विशिष्ट भक्त के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष कार्यवाही करते हैं। महाराज परीक्षित ब्रह्मांड भर से आए श्रेष्ठ अध्यात्मवादियों की उपस्थिति से इसे समझ सके। भगवान अपने भक्तों के साथ निवास करते हैं, अतएव बड़े बड़े संतों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति की सूचक थी। अतएव राजा ने महर्षियों की उपस्थिति को परमेश्वर के अनुग्रह का संकेत मानकर उनका स्वागत किया।
हाँ, देखिए अगर हम मान भी लेते हैं कि कोई भगवान के भक्त हो, अगर आसक्ति बढ़ गया हो उनको दुनियादारी चीजों में, तो वो मोहित हो जाता है कभी कभी इस दुनिया में, भक्त भी नवसिखी अवस्था में। तो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई बच्चा कभी कभी सो जाता है लेकिन माता सोचते है कि इसको अभी खीर पिलाना है, लेकिन बच्चा उठ नहीं रहा है, तो माता चिमटी देती है उसको, चिमटी देती है, कुआ कुआ कुआ, वो ऐसे चालू कर देता है, आवाज करता है, तो रोना चालू करता है, तुरंत माँ मुख में खीर डाल देती है, खीर पीकर वो आंसू पोंछ लेता है, अच्छा लगता है उसको। इस तरह भगवान भी क्या करते हैं, भक्त आसक्त हो गया, भक्ति में सो गया वो, भक्ति मार्ग को छोड़कर अभी आसक्ति में पड़ गया, तो भगवान चिमटी दे देते हैं उसको, अनासक्ति पैदा करके जगा देते हैं उसको। तो जगा कर, जगाने के बाद जब रोता है तो भगवान अपने ही श्री चरणों की मधु उसको दे देते हैं, तो भगवान की भक्ति में डूबकर वो आनंद प्राप्त करता है। ऐसे चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, आसक्ति अगर बढ़ेगा तो भगवान काट देंगे आसक्ति को। जैसे आप लोग जानते हो डॉक्टर लोग जो फोड़ा आता है ना, अगर फोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया तो दवाई से वो ठीक नहीं होता, क्या करना होता है, हाँ निकालना होता है ऐसे। इसे आसक्ति भी थोड़ा ज्यादा हो गया तो भगवान क्या करेंगे, अरे इसको ज्यादा ही हो गया, भक्ति भी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है बेचारा, है आसक्ति बढ़ गया, काट दो उसको, काट देते हैं भगवान ऐसे, तो खींच लेते हैं अपने पास। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, डॉक्टर चक्कू दिखाता है तो भाग जाता है कोई, घर में जाकर बोलता भाग गया मैं डॉक्टर से, तो नुकसान किसको, क्या डॉक्टर को नुकसान है क्या, डॉक्टर किसी और को काटेगा, किसी और को ठीक करेगा वो, कहा नुकसान हमारा है क्योंकि फोड़ा ऐसे ही रह गया है ना, निकाला नहीं हमने। इसलिए जब मैं एक डॉक्टर के पास जाता था, वो क्या करते थे, उनके पास 3-4 बॉटल था, उसमें अलग अलग चॉकलेट थे, वो पूछते थे राधेश्याम तुमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, मैं बोलता था हरे का एक एक दे देने का, ऐसे तो ऐसे खोल कर रखते थे, मैं एक एक उठाता था एक हाथ से, इतने में इधर ट्रीटमेंट हो जाता था पूरा, इंजेक्शन तो इंजेक्शन देते देते ऐसे। तो इस तरह भगवान भी भक्त को मिठास देते हैं, भक्ति मार्ग का रस प्रदान करते हैं, प्रदान करके भगवान दुनियादारी चीजों से अनासक्ति पैदा करते हैं। देखिए कभी कभी आपको अनुभव होगा कि कुछ प्लास्टर लगाया आपने कुछ घाव के ऊपर, 2 दिन के बाद उसको निकालना हो तो निकलता नहीं कभी, अगर आपको ऐसे निकालना हो कर 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 ऐसा आवाज आता है तो बाल को भी निकालता है वो, बहुत दर्द होता है, लेकिन थोड़ा अगर आप थोड़ा पानी डाल दिया तो आसानी से निकल जाता है स्मूथली। ऐसे भगवान भी कृष्ण प्रेम का जूस दे देते हैं भक्तों को, थोड़ा हायर टेस्ट, हायर टेस्ट देकर भगवान हमारे हृदय में अनासक्ति पैदा कर देते हैं, तो तभी हमको लगता भी नहीं कि भगवान ने ऐसे अनासक्ति पैदा किया है, ऑटोमेटिकली भक्त अनावश्यक चीजों को छोड़ देता है भक्त ऐसे। इस तरह परीक्षित भी सोच रहा है भगवान ने ऐसे किया। अगले श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है,
तमोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाताः।
पढ़िए अनुवाद।
हे ब्राह्मणों, आप मुझे पूर्ण रूप से शरणागत के रूप में स्वीकार करें और भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माँ गंगा भी मुझे इसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को धारण किए हूँ। अब चाहे तक्षक नाग या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी चमत्कारी वस्तु मुझे तुरंत ढस ले, मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि आप सब भगवान विष्णु की लीलाओं का गायन करते रहें।
देखिए कुछ डर नहीं है उसको, वो बोल रहा है कि मैं बैठा हूँ गंगा के तट में और मेरे समक्ष इधर इतने ऋषि मुनियां आए हैं, दुनिया के कोने कोने से देवताएं आए हैं, साथ साथ में भगवान की कथा आप लोग बोलेंगे मैं सुनूंगा, और मेरे हृदय में भगवान हरि की श्री चरणों को धारण करूंगा मैं। इस अवस्था में कोई भी आकर मुझे मारे क्या फर्क पड़ता है मुझे, मुझे किसी भी तरह का डर नहीं, बोलता है। तात्पर्य का पहला लाइन पढ़े,
जो ही कोई परमेश्वर के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह मृत्यु से तनिक भी भयभीत नहीं होता।
हाँ, तो भगवान के श्री चरण जिसके जिसको प्राप्त हो चुके हैं वो कभी डरता नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, आगे भी और एक लाइन पढ़िए,
गंगा नदी के तट पर भगवत भक्तों की उपस्थिति से तथा महाराज परीक्षित द्वारा भगवान के चरण कमलों में पूर्ण शरणागति से उत्पन्न वातावरण इस बात की गारंटी थी कि राजा भगवत धाम वापस जा रहे हैं। इस तरह वे मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो गए।
मुक्त हो गए, इसलिए सुंदर श्लोक है। वो बोलता है दशत्वलम गायत विष्णु गाता, वो तक्षक आकर मुझे काटे मुझे डर नहीं, आप लोग विष्णु की कथा गाते जाओ गाते जाओ। अगले श्लोक भी महत्वपूर्ण श्लोक है,
पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिप्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिम्। मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः।
ये तीन वरदान मांग रहा है। पहला बोल रहा है कि भगवती अनंते रति, भगवान कृष्ण के लिए मेरे हृदय में रति जग जाए, मैं सदा कृष्ण की स्मरण चिंतन करते रहूं। दूसरा वरदान मांग रहा है प्रसंगस्य तदाश्रयेषु महत्सु, प्रसंगस्य तदाश्रयेषु, बोल रहा है कि मैं भगवान के शुद्ध भक्तों की संग मुझे प्राप्त हो, ये दूसरा वरदान मांग रहा है। पहला वरदान क्या है, भगवान के लिए प्रेम जागृत हो मेरे हृदय में, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो। और तीसरा बोल रहा है कि मैत्रेस्तु सर्वत्र, सब प्राणियों के साथ मेरा मैत्री हो, बोलता है। ये क्यों बोलता है, देखिए उसको पहले थोड़ा झगड़ा हो गया था किसके साथ, ये समिक ऋषि के साथ, क्योंकि उनके गर्दन में मृत सर्प को डाला। अभी वो बोल रहा है कि मैं इस तरह का कार्य कभी नहीं करूं, मैं सब जीवों के साथ मैत्री जोड़ू, किसी के साथ मैं क्रॉस ना करूं। देखिए हम इस्कान में रहते हैं, हम लोग भक्त हैं, हमेशा सब भक्तों के साथ अच्छा मैत्री रखना आवश्यक है। क्यों, आजकल भक्त लोगों को इधर एक भक्त एक मंदिर में इधर है, कभी दूसरे मंदिर में उसको सेवा मिलता है, कहीं तो तीसरे मंदिर में। तो जिस व्यक्ति के साथ आपका दुश्मनी हुआ है एक बार, हो सकता है कि भविष्य में उसी भक्त के डिपार्टमेंट में आपको डाल देंगे, वो आपका हेड होगा, उसके नीचे आप रहोगे, नहीं तो आप हेड होंगे नहीं तो वो नीचे रहेगा, दोनों सोचेंगे अरे वापस हमको मिलना पड़ा इससे, मैं ये मंदिर में था इधर से इधर आया, ये मंदिर में था इधर से इधर आ गया, अभी दोनों जुड़ गए वापस, हम निकट ही आना चाहते नहीं थे, चेहरा भी नहीं देखना चाहते, लेकिन इसके अंडर काम करना है, ऐसे भी हो सकता है। इसलिए भक्त को अच्छा है कि किसी भी दूसरे जीव से दुश्मनी ना करे, अगर कुछ समस्या भी हो रिश्ते में, लेकिन एक दूसरे को माफ करके आगे भक्ति में चलते रहना चाहिए। तो इसलिए बोल रहा है कि मैत्रेस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, ये तीन वरदान मांग रहा है, भगवान के लिए आसक्ति, भक्तों का संग, सब प्राणियों के साथ मैत्री, इस तरह का प्रार्थना कर रहा है वो इधर। अभी 17वां अनुवाद पढ़िए, 17वां।
पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों के बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर कर लिया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्रों को सौंप दिया।
एकदम ड्यूटी परफेक्ट करके अभी पूरा भगवत चिंतन में लगने वाले हैं। अभी आगे 18वां पढ़ लीजिए और एक अनुवाद।
इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्ग लोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने लगे और हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे तथा दैवी नगाड़े बजाने लगे।
देखिए देवता लोग बहुत खुश होते हैं जब उनको पता चलता है कि कोई भगवत धाम लौटने वाला है, वो फूल की वर्षा कर रहे हैं। देखिए सब देवता इधर, इस तरह आप जानते हैं कि अर्जुन को शिव जी ने पाशुपतास्त्र प्रदान किया, अनेक देवताओं ने अलग अलग आयुध दिया इसे। तो देवता लोग भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, फूल भी वर्षा करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पदवी के लिए कॉम्पिटिशन नहीं इनका। अगर कोई इंद्र के साथ भौतिक इच्छा लेकर स्वर्ग में कॉम्पिटिशन करने के लिए जाएगा, इंद्र उनको उनका टांग खींचेगा, उनका उनको समस्या देगा। लेकिन उनको मालूम है कि परीक्षित किधर जाने वाला है, सीधा भगवत नाम लौटने वाला है, इसलिए वो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, फूल की वर्षा कर रहे हैं ऐसे। तो वो भी भगवान के भक्त हैं, देवता भी। आगे 19वां
वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित के निर्णय को सराहा और बहुत अच्छा कहकर उन्होंने अपना अनुमोदन व्यक्त किया।
इसका मतलब सब ऋषियों ने उनको आशीर्वाद दिया, किसको, परीक्षित को। या आगे,
स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए उन्मुख रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। अतएव वे भगवान के भक्त महाराज परीक्षित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले,
नवायिदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येद्यासनं राजकिरीटजुष्टम् सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामाः।
ये बोलते हैं कि परीक्षित को बोल रहे हैं कि हे राजन, तुम सही ढंग से कृष्ण के आदेशानुसार अनुगमन करते हुए आपने अपने जीवन जिया है, और आपके सिंहासन में जब आप बैठे रहते हो अनेक लोग सर झुकते हैं, अनेक राजा ने अपने मुकुट को तुम्हारे पांव में रखा है। इसका मतलब क्या है, सारे दुनिया के राजा लोग तुमको झुकते थे, ऐसे बता रहे हैं ऐसे। और आप अपने राज्य को त्याग कर अभी भगवान के श्री चरणों में सर झुकने के लिए आप जा रहे हो, ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम महान पुरुष हो। इस तरह वो लोग उनकी गुणगान कर रहे हैं। आगे 21 अनुवाद 21-22।
हम सभी यहां पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कलमश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त हैं।
और एक पढ़ लीजिए,
महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन दिया।
और एक 23।
राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी हैं। फल स्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है।
प्रभु तात्पर्य बताते हैं, अगर ये लोग इतने महान पुरुष हैं तो भौतिक दुनिया में क्यों आए हैं, कोई पूछ सकता है ना। इसलिए प्रभु तात्पर्य बता रहे हैं कि वो लोग भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु का चक्कर काटने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन बाकी बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए आए हैं, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। और एक पढ़ लीजिए 24।
हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ, कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो मरणासन्न, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए।
दो प्रश्न पूछ रहा है परीक्षित, साधारण जनता के लिए क्या धर्म है, और अगर कोई मृत्यु के निकट आ गया हो उस व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, ये इन लोगों को पूछा। अब ये ऋषि मुनि जो बैठे थे वो अलग अलग दिशा से आए थे, वो कुछ लोग ज्ञानी थे, कुछ लोग योगी थे, जैसे डॉक्टर में आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है, एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है, नेचुरोपैथी होता है, उसको एक ही व्याधि के को लेकर पूछो, अलग अलग लोग अलग अलग दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे, है ना। इस तरह ये लोग भी अलग अलग चीज बोल रहे थे। तो अगले श्लोक में आप देखेंगे कि इस तरह आपस में ऋषि मुनि लोग बातचीत कर रहे थे कि साधारण जनता का धर्म क्या है और मृत्यु के निकट जो व्यक्ति है उसका धर्म क्या है। इसके बारे में चर्चा जब चल रहा था उस समय आ पहुंचे सुखदेव गोस्वामी जी। तो उसको हम अगले सत्र में आगे बढ़ाएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण सेक्शन है, लास्ट पार्ट है। तो 25-40 ये 15 श्लोक जो है ये भागवत के बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं, उसके बारे में अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। अभी आज के सत्र में हमने ये बात समझा कि शुरुआत में जैसे मैंने आपको बोला इनकी पश्चाताप किसकी, परीक्षित की, पश्चाताप से सीखने लायक। तो पश्चाताप के चार चीज बोला मैंने आपको, क्या करना चाहिए, पहले मान लेना चाहिए अगर हमने गलती किया तो, उसके बाद शर्म आना चाहिए, उसके बाद तीसरा क्या बोला, दंड सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए, दंड लेने के लिए, और चौथा है बाकी उसी की गलती को वापस नहीं करना चाहिए, और पश्चाताप का मतलब है ऐसे रोना चाहिए कि मैंने क्यों किया, नहीं करना था, हो गया हमारे हाथ से, भविष्य में हम कभी नहीं करेंगे, हे भगवान हमें माफ कर दो, हम और सावधानी अपनाएंगे, इस तरह ये सब ऐसे सोचना चाहिए। तो इस तरह है, उसके बारे में पहले हमने सीखा और आगे जाकर इसके पश्चाताप के बाद हमने किस विषय के बारे में पढ़ा, और एक विषय पश्चाताप के बाद परीक्षित के बारे में है। अच्छा हाँ, वो दूसरी बात है, शाप को वरदान के रूप में कैसे देखना, हमने विदुर की चर्चा की, ऐसे अनेक चर्चा विषयों की चर्चा की। हमारे जीवन में भी कुछ तकलीफ आए, उस तकलीफ को देखिए, कलयुग में इतना तकलीफ है, हम जोर से भगवान का नाम पुकार सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो दुख को कोसने के बदले उसको परिवर्तित करना चाहिए सकारात्मक रूप से, उसके बारे में चर्चा किया। और आगे जाकर और एक विषय क्या है, परीक्षित की नम्रता, उसके बारे में चर्चा किया ऋषि मुनियों को देखकर। और एक विषय चर्चा किया कि परीक्षित कैसे उनके अंदर अहंकार नहीं था और इसके एकदम विरुद्ध अपने में दोष देखा उसने कि मैं आसक्त हो चुका हूं, अनासक्ति देने के लिए भगवान ने इस तरह मुझे ये श्राप दिया है, और श्राप को निडर होकर स्वीकार लिया और उसको सकारात्मक करके गंगा के तट में जाकर बैठकर ऋषि मुनियों को मिलकर उनसे आशीर्वाद मांगकर उनकी प्रशंसा करके आशीर्वाद मांगकर उस समय भी नम्रता आप देख सकते हैं परीक्षित की। सोच रहा है कि मैं एक बद्ध जीवात्मा हूं और ऋषि मुनि निकट भी नहीं आ सकते मेरे निकट, लेकिन आए हैं। तो इस तरह परीक्षित की नम्र भावना सीखने लायक चीज है हम भक्तों के लिए। तो आगे अगले सत्र में सुखदेव गोस्वामी कैसे आए उधर, उनके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, और परीक्षित ने उनको उनके सामने प्रश्न प्रस्तुत किया और अपने कृतज्ञता को परीक्षित कैसे प्रकट कर रहा है सुखदेव गोस्वामी के बारे में पास जाकर, वो भी सीखने लायक चीज है। तो उस समय उन चीजों को चर्चा करके इस अध्याय को हम अगले सत्र में हम पूर्ति करेंगे इसकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, अभी हम